बचपन से ही बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का, और जो है ना मैं बड़ी ख्वाहिश थी कि यार जब मैं कभी भी जाऊंगा ना पाकिस्तान तो मैं ट्रायल्स दूंगा और इस तरह के ना ज्वाइन करूंगा क्रिकेट एकेडमी वगैरह।
नहीं, अब हम पॉडकास्ट क्या करेंगे
हाँ नहीं, अब मैं
क्रिकेट
तो खैर टाइम नहीं है
के?
इतना। और मुझे याद है जब वो एक कहते हैं ना, जब आपको कोई तकलीफ हो तो आप दुआ करें ना तो वो दुआ कबूल होती है, तो मैं लिटरली बात बता रहा हूँ, जब मुझे कोई चोट लगती थी ना कोई, फॉर एग्जाम्पल जाते जाते कहीं पैर साइड पे लग गया या कोई चीज़ ऐसे लग गई, मैं दुआ मांगता था कि पाकिस्तान जीत जाए, जब पाकिस्तान ही मैच चल रहा है पाकिस्तान जीते, मतलब मुझे और कोई दिमाग में चीज़ नहीं आती थी। हम शीशे के सामने
ये इनको तो ये शीशे के सामने
आपको पता है क्या होना चाहिए, आपको आपको आईएसए का चीफ होना चाहिए।
चले आप अपनी शीशे वाली कहानी
आपकी हुब्बुल वतनी इतनी है कि
love the Muslims. I think they're great people.
Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Podcast Choke. Ji aaya nu. Aur kya hota hai? Pakhair agle. Aur भी काफ़ी सारी ज़ुबानों में भी कहा जा सकता है। आज हमारी पॉडकास्ट चौक की थर्ड सीज़न की 13 एपिसोड है और हमारे साथ स्पीकर्स में हैं एहसन भाई। एहसन भाई लास्ट एपिसोड में भी मौजूद थे और अब हमारे रेगुलर स्पीकर होते जा रहे हैं, और हमारे एक आज एक नए स्पीकर हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट कह सकते हैं उनको, मोहसिन भाई।
नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इन्वाइट करने का। बस मैं ताहा भाई से भी डिस्कशन हो रही थी कि मैंने कहा ये कुछ आपको मार्केटिंग करनी है इसकी ना पॉडकास्ट की, तो मैंने कहा चलें पहले मैं खुद आ जाता हूँ, हो सकता है उससे व्यूज़ बढ़ जाएं काफ़ी सारे।
गुड गुड। तो और वैसे भी हमारा जो ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपकमिंग बिजनेस टाइकून के लिए भी है, अपकमिंग जो है प्रॉपर्टी टाइकून के लिए भी चल रहा है। तो आज कल अब आज जो हमारे साथ हैं वो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं।
हाँ नहीं, आर्टिस्ट बस आप लोगों ने बना दिया है, इतनी खास स्किल्स हैं नहीं तो।
और इसके साथ हमारे साथ हैं रेगुलर स्पीकर इब्राहिम भाई और मैं हूं अदनान। शायद मेरी आवाज़ पहचान गए होंगे। आई थिंक
अदनान भाई आपने आज रिकॉर्ड कायम किया है, तारीख रकम किया है आपने।
क्या किया है? रिकॉर्ड
तारीख रकम की है, रिकॉर्ड कायम किया आपने।
किस चीज़ का?
आपने इतना ज़बरदस्त होस्टिंग ओपनिंग की है। अच्छा। मेरे ख्याल में आकिफ सुनेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा कि यार मैं क्या करता रहा।
नहीं, आकिफ सुनेगा तो कहेगा कि आइंदा इसको होस्टिंग भी दे।
आपको लेकिन बोलना चाहिए था जी मेरा नाम अदनान है और मेरा ताल्लुक चीचावतनी से है।
हाँ, चीचावतनी से ही ताल्लुक है मेरा। और
पहला मेरे ख्याल में ये कि आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी वेरीड हैं मेरे ख्याल में।
हाँ,
और ये सारे टॉपिक अदनान भाई की रिक्वेस्ट पर रखे गए थे।
नहीं, मेरी रिक्वेस्ट पर बिल्कुल नहीं रखे गए थे, मुझे तो बिल्कुल लास्ट टाइम में बताया गया कि आप भी इस पैनल में शामिल हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट थी,
मेरी रिक्वेस्ट थी एक्सपर्टीज।
नहीं, मेरी रिक्वेस्ट थी कि जो है
आप जितना कामरान खान को फॉलो करते हैं।
किसको?
इमरान खान। कौन है वो एंकर? कामरान खान नहीं, इमरान खान
एंकर।
एंकर नहीं है जिसने इमरान खान से भी इंटरव्यू किया था अभी, वो इतना फेवरेट है। मैं अभी कुछ दिन पहले अदनान भाई के घर गया तो उसको लगा के रिसेंट वीडियो सजेस्टेड वीडियो में उसी की लाइनें आई, क्या देख रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो जब बैठता है ना तो उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है, ग्रीन स्क्रीन पे एक कमरा बना हुआ, उसका किताबें होता है, बड़ा जबरदस्त सेटअप वो होता है ना उस तरह का, लेकिन इतना अपेरेंट होता है कि वो ग्रीन फेक स्क्रीन है। तो आप थे ये कि आकिफ था?
हाँ, आकिफ था। आकिफ कहता है कि
यार इसका सेटअप तो बड़ा प्रोफेशनल है, यूट्यूब के अंदर ये सारे चीजें कर रहा था। ये ग्रीन स्क्रीन है यार तुम्हारी आंखें, तुम क्या है? तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अदनान भाई जो है वो तो आप कुछ करें एंकर, वो जर्नलिस्ट जिसको आप मानते हैं उसकी सारी प्रेडिक्शन अदनान भाई फॉलो करेंगे।
नहीं नहीं, मैं फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो नहीं करता, मैं सुनता हूँ। मैं इमरान खान को सुनता हूँ, मैं हारून रशीद को सुनता हूँ, मैं कामरान खान को सुनता हूँ।
लेकिन मुझसे आपने एक सवाल किया था कुछ दिनों पहले, हम लोग खाते बैठे थे तो अदनान भाई ने पूछा कि आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है पाकिस्तान में जो मीडिया में आता है। एक तो कॉलमिस्ट भी है और एट द सेम टाइम वो
एंकर, आप कह सकते हैं एंकर कौन है?
हाँ, एंकर, एंकर बेसिकली जो कौन है। तो मैंने इनको जवाब दिया कि मुझे कोई भी नहीं पसंद, यानी पूरी इसके अंदर आप, फिर उन्होंने मल्टीपल नाम लिए, मैंने कहा मुझे इनमें से सब में कुछ ना कुछ कमियां महसूस होती हैं।
देखिए
तो मैं किसी को भी बहुत क्लोजली फॉलो नहीं करता,
परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, हर बंदे से कोई ना कोई आप नेगेटिव चीज़ तो निकाल
नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि कौन जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के अंदर जिसको उतरना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कोई ना कोई कभी ना कभी किसी के लिए फेवर में बायस्ड रहा है, रहता है और
देखा जाए बदल जाता है। अभी अभी पीछे अभी जो हॉट टॉपिक चल रहा था पाकिस्तान में ब्रॉडशीट का, तो उसमें डिफरेंट एंकर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, कुछ जो थे वो गवर्नमेंट के हक में इसमें बोल रहे थे और कुछ एंकर ऐसे थे कि यार वो कह रहे थे कि नहीं यार ये तो सब गलती गवर्नमेंट की है, ये जो भी जो फाइन हुआ ये गवर्नमेंट की ही वजह से हुआ है, कुछ एंकर उसके अगेंस्ट थे कुछ हक में थे। तो ऐसे जिसका बैकग्राउंड पता है किसी इब्राहिम को कि ब्रॉडशीट है क्या वैसे बेसिकली?
अच्छा ब्रॉडशीट के बारे में मुझे अभी फर्स्ट टाइम जो मैंने पिछले दो हफ्ते में जो खबर आई है तब मुझे पता चला कि ब्रॉडशीट नाम का कोई यहाँ पे एक
फर्म है
और ये सारा हो रहा है। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो पता लगा कि ये तो 2000 के अंदर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और नैब जो है वो उससे इंगेज कर रही है। नैब जैसे लोगों को पता होगा नैब जो इदारा था मुशर्रफ ने बनाया था, तो नैब ने ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसने जो यूके बेस्ड दो फर्म्स हैं जिसमें एक ब्रॉडशीट थी और एक और कोई फर्म थी, उनसे एंगेज किया कि हम एसेट रिकवरी केस चाहते हैं जो भी दुनिया के अंदर जिसने पैसे छुपाए हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन करके व्हाटएवर है। तो ये मैं आपको सरसरी तौर पर बता रहा हूँ, ऑब्वियसली इसके अंदर और फाइन डिटेल्स होंगी जिसको पता होगा। तो बहरहाल जब उसने ये करना शुरू किया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, तो उसकी एक शर्त थी ब्रॉडशीट ने कहा कि मुझे तो पहले महसूस हो रहा था जो इनिशियली जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया तो ये पॉलिटिकल विच हंट लग रही थी मुझे, क्योंकि इसमें सिर्फ नवाज शरीफ और उससे रिलेटेड यानी जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी उसके जो कारिंदे थे उन्हीं के ऊपर सिर्फ केसेस थे, पूरी करप्शन और जिसको कहते हैं ना पूरी एक बड़ा जो माफिया होता है पॉलिटिकल वो नहीं था। तो हमने उससे बोला कि हमने रिजेक्ट कर दी। तो हमारी रिजेक्शन के ऊपर फिर ये कि मुशर्रफ की जो ने ये किया कि ठीक है आपकी बात सही है, हमें इसके अंदर और लोगों को इंक्लूड करना चाहिए जिसमें फिर जरदारी और भुट्टो ख़ानदान और फिर वो बाकी दीगर जो भी आपके पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, मुझे नहीं पता उसके अंदर कोई आर्मी जनरल्स एक्स रिटायर्ड कोई थे या नहीं थे, बहरहाल पॉलिटिशियंस वो ज़रूर थे। तो उसने बोला कि उसके अंदर हमें आई थिंक 6 या 7 कोई बड़ी फैमिलीज थी या कोई नाम थे और भी उससे ज़्यादा थे, आई डोंट नो 200 थे कुछ, मुझे फिगर नहीं पता एग्जैक्टली। तो एक लंबी लिस्ट थी जिसको उन्होंने हैंड ओवर की। अच्छा उसमें क्या हुआ कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई, अकॉर्डिंग टू ये ब्रॉडशीट का क्लेम है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई और एज एक्सपेक्टेड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2003
का कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था ना, कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ था कि अगर जो भी पाकिस्तानी जो थे जो ओवरसीज जिनकी जो भी प्रॉपर्टीज है उनको डिग आउट करना है इन्होंने, तो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि जो भी डिग आउट होगी प्रॉपर्टी डिग आउट होगी या अकाउंट डिग आउट होंगे उसमें से 20% ब्रॉडशीट रखेगी और बाकी 80% जो है वो गवर्नमेंट का होगा। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था शुरू में जब भी नैब फॉर्म हुई थी मुशर्रफ के दौर में। तो उसके बाद जो भी इन्होंने लिस्ट वगैरह प्रोवाइड की तो जो जो इसका चेयरमैन है क्या नाम है उसका ब्रॉडशीट का,
मुसावी,
हाँ मुसावी आई थिंक वो ईरानियन है,
उसने खरीद ली थी। नहीं असल में हुआ
ये था ईरानियन
बर्तानी,
हाँ नहीं पहले पहले क्या होता कि ब्रॉडशीट जिसके नाम पे थी वो जर्मी समथिंग जेम्स कोई नाम है बंदे का, आई थिंक आई एम नॉट श्योर। तो हुआ ये था कि उस बंदे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब वो ब्रॉडशीट को ओन करता था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो गया था 2003 में, तो 2000-2003 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज थी जो उसने पे नहीं की थी अकॉर्डिंग टू ब्रॉडशीट। तो ब्रॉडशीट ने फिर ये कि सू कर दिया था और जो सू किया था लंदन कोर्ट के अंदर 2016 के अंदर उसने सू किया और 2019 के अंदर ब्रॉडशीट जीत गया था केस अप फॉर अराउंड $21 million का 2019
जीत गया था।
हाँ लंदन कोर्ट में नैब के खिलाफ उसने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, नैब मींस पाकिस्तानी गवर्नमेंट। हाँ
हुआ यूं था जो मुझे हिस्ट्री इसकी पता है कि जब 2 साल तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही और ब्रॉडशीट ने कुछ डिग आउट भी कर ली चीज़ें,
हाँ कर ली थी।
तो उसके बाद जाहिर बात है जो मुशर्रफ साहब थे उन्होंने अपने उस इकदार को तूल तो चढ़ाना था,
हाँ
उस तूल चढ़ाने के उसमें उसको जो भी चौधरी मिले थे उसके साथ उन्होंने उनको मशवरा दिया कि भाई आप अगर इस तरह करेंगे तो आपको आप आगे इकदार में नहीं आ सकते। तो उन्होंने
क्या यानी आपका इकदार तोल नहीं दे सकता,
तोल नहीं दे सकता वो। तो उसने क्या किया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही थी उसमें शरीफ फैमिलीज भी थी, उसमें क्या नाम है जरदारी फैमिली भी थी, भुट्टो फैमिली भी थी,
शेरपाओ का भी नाम आ रहा था,
हाँ शेरपाओ का नाम था। तो उन्होंने कहा कि बस यहीं पर इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है उसको रोक दो, ठीक है, हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वन साइडेड, इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी ब्रॉडशीट ने केस किया तो वो केस जीता।
एक और चीज़ थी भाई, तो ब्रॉडशीट ने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बोला था कि बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनमें से कोई नाम निकालेगी नहीं।
हाँ
हाँ सुना, हाँ सुना, गवर्नमेंट ने निकाल दिया।
और बाद में यही हुआ कि फिर गवर्नमेंट ने कह रहे थे, उसने बोला बंदे एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसी तरह किया कि बाद में आके जारी बात है कि आपके तो पावर
अपने बंदे निकलना शुरू
हो गए, पावर डीलिंग और ये आपने करना होता है ना, जरा दान भाई कह रहे कि आपने फिर डीलिंग करनी है, किसी का नाम निकालना है, किसी का डालना है, व्हाटएवर। तो दैट्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट आई, उसने बोला कि फलाने का निकालो, इसको रखो, इसको निकालो। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें यही हम कह रहे थे। बहरहाल अल्टीमेटली हुआ ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हुआ तो कुछ भी इन्होंने नहीं किया उसका। और ये जो गवर्नमेंट है, ये जो कंपनी है, इसने कहा कि हमने एक्चुअली चीज़ें हैंड ओवर की हैं इनको प्रॉपर सबूत के साथ। वो सबूत अब पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर चले ना चले वो एक अलग मसला है। तो जिसपे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनको जो भी पैसे थे इनके वो नहीं दिए थे। तो मज़े की बात उसमें एक ये हुई,
नहीं मज़े की बात ये थी पैसे देने नहीं थे इन्होंने, पैसे ये
यानी रिकवरी थी, लेकिन उन्होंने कोई क्लॉज तो बनाया होगा ना कि अगर हम वहां से रिकवर नहीं कर सके और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, तो हमारा जितना मेहनत है वो सारी हम कहां से लेंगे। दैट वाज अ पॉइंट। अगर कोई पैसे रिकवर, और ब्रॉडशीट ने कहा पैसे रिकवर भी हुए, इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए,
रिकवर नहीं, इन्होंने पूरा केस बना के नैब को भेजा। तो आगे जो नैब ने आगे केस चलाना था उसके बाद रिकवरी होनी थी, इन्होंने उस केस को आगे कंटिन्यू किया ही नहीं क्योंकि इनका एनआरओ साइन हो गया था। इन्होंने जो भी फैमिलीज वगैरह थी उनको अपने साथ तो मिलाना था ना, मुशर्रफ ने तो अपने
उसमें यही मेंशन था कि जो ब्लैकमेलिंग के लिए ना जो बड़े बड़े ये जो पॉलिटिशियंस थे कि आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम आपके केसेस खोल देंगे, तो वो एक बहाना चाहिए था इन्हें कि उनको एक प्रूफ के साथ बता सकें कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो फिर हम आपके केसेस आगे खोल देंगे।
इस पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो समा का जो आर्टिकल है उसने क्या लिखा है। उसने लिखा है कि आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन द लिस्ट ग्रू टू 200 पीपल एंड देयर कंपनीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडशीट LLC। Notable on this list were the Bhutto Zardari families, the Sharif family, and an individual who later went on to become the Interior Minister during the Sharif government in 2013. Ab sunen. We insisted that the contract must contain a clause that the list of names could not be changed after the contract went into force. Musavi said later events proved us correct in insisting on this clause. He said Musharraf appointed Lieutenant, yeah, Lieutenant, I don't know, General Muhammad Amjad as the NAB chairman.
Chairman.
ठीक है. During this time, NAB was very cooperative and the investigation was going very well, according to Broadsheet CEO. However, I wasn't surprised when General Amjad was removed very quickly because he was determined to clean up Pakistan. He said, I thought he was very naive to think that. Musavi said successive NAB leadership, including लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट क्या पढ़ेंगे उसको, लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं,
देसी में लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं।
अच्छा, तो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल एंड लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हफीज प्रेजेंटेड एविडेंस दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कोर्ट। वी आल्सो बिगन टू रिसीव ओपन रिक्वेस्ट टू एक्सक्लूड सर्टेन इंडिविजुअल्स फ्रॉम द टारगेट लिस्ट। अब सुने, द ब्रॉडशीट सीईओ सेड नैब सैबोटाज्ड हिज फर्म्स एफर्ट एट एवरी स्टेप। We had identified, अब ये केस बता रहा है, we had identified and frozen an account in New Jersey and asked NAB to seek release of the funds to Pakistan. New Jersey से बोला कि ये funds पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, जिसके भी उसको फ्रोज करो, उसको रिलीज करो। You know what they did? ये खुद बोल रहा है बंदा, you know what they did? First, they removed the person's name from the list of targets, then they released the funds to him, and third, they appointed him home minister. Do I need to say more? Yes, give a comment. तो basically उसने कहा है कि ये सारा तमाशा हुआ। खैर, तो about the results broadsheet delivered, Musavi said they identified hundreds of millions of stolen dollars, possibly a billion or even more.
बिल्कुल।
फिर उसने और भी चीजें लोगों के नाम लिए और बताया। Basically तो Musavi ने कहा कि हमने इतनी ज्यादा चीजें को आइडेंटिफाई कर लिया था, आइडेंटिफिकेशन तो कम से कम हमने कर ली थी कि ये लिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर, ऑलमोस्ट अमाउंटेड टू बिलियन। अब जारी बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इमरान खान और उससे पहले भी लोग बोलते हैं कि वो 200 बिलियन है और फलाने बिलियन है और कितने बिलियन कहाँ पे। इन्होंने बोला कि हमने ऑलमोस्ट 1 बिलियन तक तो कर लिया था, उसके बाद तो रुक गई जो भी इन्वेस्टिगेशन थी वो रुक गई थी काफी, जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था 2003 में।
रिकवरी इनका काम नहीं था, रिकवरी
इन्होंने कोशिश की ना रिकवरी की,
वो जो एक केस
को वो बताया तो उसमें ये हुआ फलाना। खैर, जो भी था इनको ओ करते थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट। बीच में क्या हुआ कि ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, इसको पैसे वैसे भी नहीं मिले. तो जो इसका एक्स ओनर था, जर्मी समथिंग जो भी था, उसने ये मुसावी जो ईरानियन कोई है कंसल्टेंट है जो बिजनेसमैन है, उसको उसने कंपनी भेज दी. पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ये, अब ये ब्रॉडशीट का क्लेम है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आउट ऑफ यानी चालाकी या धोखा या व्हाटएवर, उन्होंने इस केस को सेटल करने की कोशिश की विद जर्मी समथिंग. अच्छा, जर्मी ने क्या किया, जब उसने कंपनी भेज दी, उसने एक और कंपनी खोल ली आइल ऑफ मैन या पता नहीं कहाँ पे विद द सेम नेम ऑफ ब्रॉडशीट, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उससे एंगेज करके उसको 5 मिलियन देकर बोला हमने केस क्लोज कर दिया तो अदर कंपनी.
अच्छा,
तो फिर इसका ये जो कंपनी, इसने फिर केस किया कि भाई इसने तो ये हमारे से चीट किया, फ्रॉड किया, जिस बंदे जो ओनर था वो चला गया, कंपनी तो ये है ना, जिस कंपनी ये तो लाइबिलिटीज तो इस कंपनी की है,
कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ हुआ था,
उसके साथ तो नहीं हुआ था,
उस शख्स के साथ थोड़ी ना हुआ.
एग्जैक्टली, तो फिर वो ये हुआ कि उन्होंने लाहौर बोला, लंदन की कोर्ट के अंदर उन्होंने फिर केस किया, केस जीत लिया उन्होंने,
कोर्ट में करता तो शायद अच्छा होता,
फिर केस जीत लिया उसने, और विद इंटरेस्ट आई थिंक अराउंड 33 मिलियन समथिंग ओ करती है, या 29-30 मिलियन अराउंड दिस फिगर जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पे करने हैं इनको, दैट्स व्हाट दे क्लेम. तो गवर्नमेंट उसने कहा कि, और तो उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम तो पे नहीं कर रहे भाई, नैब ने मना कर दिया, हम क्यों पे करें. तो उस पर फिर उन्होंने मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना शुरू करी लंदन के अंदर ही रहते हुए कि हम क्या करें. तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो आई है यहाँ पे, उसके एसेट्स या उसके जो भी हो उसको टेक कर लेते. तो फिर उस पर एक केस हुआ चला, या किसी ने बोला कि नहीं यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट.
फिर एम्बेसीज के जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गए.
फिर पाकिस्तान हाई कमीशन के पास बैंक अकाउंट में जो पैसे थे उसमें से फ्रीज, उसमें से ले लिए पैसे, उसमें से पैसे निकाल लिए खुद ही गवर्नमेंट ने कहा हम यहाँ से ले लेंगे. तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फिर कहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन
पता चला, कभी हमारा 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 कभी प्राइम मिनिस्टर वहां गया था, उसको गिरवी रख
लिया. तो उसमें फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो वहां पे हमारे एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है तो निकालो. तो मेरे ख्याल में रिको टेक की भी कोई कंपनीज है वहां पे और कुछ है, तो उन्होंने अपने एसेट, क्योंकि उनको खतरा है. आई डोंट नो अब इसके करंटली इसका क्या मसला है. अभी
करंटली इसका ये किया है कि
नवाज शरीफ क्लेम कर रहा है कि मेरे बारे में कुछ नहीं मिला था, लेकिन उसने बोला कि
मेरी जीत हो गई है. तो अब हमारे पीएम ने इसके इसको देख के एक कमेटी बना दी है. उस कमेटी का जो चेयरमैन है या जो भी है, जो भी उसको सरप्राइज कर रहा है, वो है आई थिंक जो पानामा केस में जो जज था जस्टिस अजमत, उसको बना दिया. तो फिर जो मुस्लिम लीग नून है उसने फिर इतराज़ किया कि नहीं यार जस्टिस अजमत को नहीं बनाना. तो पीएम साहब कहते हैं कि नहीं, मैं तो वो जैसे वो कहते हैं कि मैं तो पूरी दुनिया को जैसे मैं जानता हूँ, इस तरह कोई भी नहीं जानता, इंग्लैंड को जैसे मैं जानता हूँ, मैं बचपन से इंग्लैंड को जानता हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं इंग्लैंड को जानता हूँ, दुनिया का कोई भी बंदा ऐसे इंग्लैंड को जानता नहीं है. तो इसलिए शायद वो ब्रॉडशीट को भी और इंग्लैंड के निज़ाम को भी उस तरह जानते हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, जस्टिस अजमत हैं जो वही जो भी सरबराही है कमेटी के वही करेंगे. अब देखते हैं फाइंडिंग क्या आती है उसका और क्या चलता है इसका. और हम जो अपोजिशन है मुस्लिम लीग नून और पीपी, वो इसके बारे में क्या कहती है, वो तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आ रही है कि नहीं हम
क्या वो ब्रॉडशीट के साथ दोबारा केस खोलने जा रहे हैं कि वो दोबारा वो सर्च इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं.
ब्रॉडशीट ने जैसे जो भी इसका चेयरमैन जो सीईओ था उसने कहा ना कि इतने बिलियंस डॉलर ऑलरेडी हैं. तो उसके बिहाफ पे जो पीएम ने एक कमेटी बनाई है कि वो उसके साथ निगोशिएट करेगी या जो भी करेगी तो फाइंडिंग देगी 40 या 45 दिन के अंदर
कि कौन है और कौन है, पैसे
का
है,
किस तरह है, क्या करना है, आगे आया दोबारा ब्रॉडशीट को ही दोबारा केस दिया जाए.
अच्छा,
हाँ,
मतलब जिस कंपनी ने इनको 30 मिलियन का वो किया है ये दोबारा उसके,
हाँ, दोबारा उसको केस दिया जाए, क्या करना है, अब देखते हैं.
तो मरियम नवाज जो फ्रॉड शीट कह रही थी उसको, ब्रॉड शीट के नाम के वो कुछ जलसे में खड़े हो गए, तो वो मेरे ख्याल में किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि ये जो ब्रॉड शीट ने बोला है कि हमारी फैमिली के ऊपर जो
बेसिकली हुआ यूँ कि ऐसा कुछ नहीं है उस केस में. जो इनके लंदन के जो फ्लैट है ना उनका कोई जिक्र नहीं है. तो पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई है वो लंदन के फ्लैट में से हुई है, तो इसलिए कहते हैं कि ये तो हमारी फतह है. लेकिन उसी उसमें इस जो फ्लैट से इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना, उन्होंने कहा कि इसके अलावा हैं
नवाज शरीफ के हैं,
ठीक है. वो शायद उन्होंने वो केस पढ़ा नहीं या वो जो भी जजमेंट आई है वो पढ़ी नहीं, तो उसके बाद वो मरीम साहिबा बाजुकात होता
वो
है
थोड़ी वो हेस्टी भी है, शायद थोड़ी जल्दी ट्वीट भी कर देती है, फिर उनको डिलीट करना पड़ता
है. मरीम साहिबा क्या, हमारे यहाँ तो जितने भी पॉलिटिशियन है वो ऐसे ही वो बाद में सोचते हैं कि अच्छा हाँ ये हमने क्या क्या कर दिया.
ट्रंप से तो
अब सवाल ये ट्वीट करके उस वक्त जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उन्होंने भी अपनी एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ये कहा कि हम जो है बड़ा इंतजाम करेंगे और जो है ना किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा इंसाफ होगा लोगों के साथ, और तब ये केसेस बने. और अभी भी जब ये गवर्नमेंट आई है तब भी यही कुछ सिमिलर हुआ है, तो इससे कनेक्शन काफ़ी मुझे तो लगता है मिल रहा है काफ़ी।
देखें अक्सर देखा भी गया है और बादी नज़र में, बादी नज़र की इंग्लिश क्या होती है, बादी नज़र में यही देखने में आया है कि हमेशा नैब को सियासत में यूज़ किया गया है, ठीक है ना। अगर मुशर्रफ के दौर में देखा जाए तो भी, उसके बाद भी जो भी गवर्नमेंट्स बनती हैं उसमें भी, और अब 2018 के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी अगर देखा जाए तो नैब को वाकई में यूज़ किया जाए। अगर अपोजिशन ये क्लेम करती है तो कहीं ना कहीं ठीक है कि नैब को यूज़ किया गया है इस बारे में कि आगे जो जब इलेक्शन आते हैं तो सारा पूरे 5 साल नैब चुप रहती है, ठीक है ना। जो ही इलेक्शन आते हैं तो एकदम एक्टिव हो जाती है कि फलाने का भी केस है, फलाने का भी केस है, फलाने का भी केस है। तो इसके पीछे कौन है, कौन सी खलाई मखलूक है या कौन से फरिश्ते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन देखने में ये नज़र आता है कि वाकई में ये वाला जो क्लेम है अपोजिशन का ये कहीं ना कहीं ठीक नज़र आता है कि सियासत में नैब को यूज़ किया जाता है।
इसके अंदर तो देखें एक और चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी अकाउंटेबिलिटी का अदारा है आपका, वो बैठ के उसके रेगुलेशंस, उसके असूल व जवाबित जो भी हैं वो तय कर लिए, क्यों नहीं कर लिए जाते। एक अपोजिशन ने, वो जब अपोजिशन में होगी तो बोलेगी नैब को ठीक करो, नैब को ठीक करो, नैब को ठीक करो, ये गलत करती है लोगों का। वही हुकूमत में आती है तो वो उसी नैब को उसी तरीके से इस्तेमाल करती है। मज़े की बात है कि मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और उनकी हुकूमत में रहते हुए नैब बहुत एक्टिव थी और उनके बंदों को उठा रही थी और उनके एलाइज़ के बंदों को उठा रही थी जो उनके साथ पार्टनरशिप में है और उनके साथ मिले, तो नवाज शरीफ ने आके फिर बोला था कि ये नैब को ये कैसा बना दिया, वो जिसको चाहे उठा दे और जिसको चाहे बंद कर दे, और ये क्या तरीका है जिसके पास है तो नैब के पर जो है वो काटने पड़ेंगे, या कुछ इस तरह का कोई कमेंट दिया। इससे बड़ा शोर हुआ था कि देखो ये उसको अकाउंटेबिलिटी को सैबोटाज कर रहे हैं, और अपोजिशन ने भी इस पर बड़ा वो, इमरान खान साहब ने भी कहा था कि सही कर रही है नैब और इस तरह होना चाहिए। अब कहने का मकसद ये कि कौन नैब पर ट्रस्ट करता है, यानी क्या नैब वाकई अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा आगे बढ़ के करती है और जो उसका तरीक़ाकार है वो वाकई इंसाफ पे मबनी है, या हॉकिश है वो, हॉकिश का मतलब कि वो बहुत एग्रेसिव है और वो यानी आउट ऑफ द वे जाके लोगों को तंग करती है। ठीक है, बाकी दुनिया के अंदर भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, अकाउंटेबिलिटी की होती हैं, करप्शन की होती हैं।
नहीं, तंग का, तंग यहाँ पे तंग का मसला नहीं है, जो जो करप्ट है उसको तंग करो, मेरा तो ये पॉइंट
मानना है। अदनान भाई, नैब क्या करती है कि ठीक है एक बंदे के हवाले से कोई केस की एलिगेशन लगी है, इल्ज़ाम लगा है, अब इल्ज़ाम को इल्ज़ाम के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा कोर्ट। ये तो इंसाफ का बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब उसके अंदर आके उस बंदे को एज अ यानी मुजरिम, ना कि मुलजिम के तौर पे उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया जाए फ्रॉम द गेट गो, के हथकड़ियाँ डाल दो उसको, जेल में डाल दो उसको, उसको उसको कस्टडी में दे दो, महीने के लिए नैब की कस्टडी में बैठा हुआ है, महीने के लिए फलाने की कस्टडी में, और फिर वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंडेड कस्टडी हो रही है और अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, अभी तक तो कुछ प्रूव नहीं हुआ, अभी चार्ज भी नहीं हुआ, कोर्ट में केस गया ही नहीं है, अभी तो सारी तफ्तीश हो रही है। मुझे नहीं पता कि होना चाहिए नहीं होना, लेकिन ऐसा बज़ाहिर महसूस होता है जब सारी दुनिया में ये बात जाती है, कहते हैं कि इस तरह नहीं ट्रीट करते, यानी आप एग्जिट कंट्रोल में डाल दें ये समझ आती है कि बंदा कहीं भाग के ना जाए, आपको इतना खतरा है। आप उसको जो अभी जो आरिफ नफी साहब के साथ जो हुआ था जब उनका केस चल रहा था, जो के जो अजराब अबराज ग्रुप के जो ओनर थे, सीईओ थे, जो भी थे, यूके के अंदर उनके ऊपर केस हुआ तो उनको होम अरेस्ट कर लिया कि घर के अंदर बैठे रहो तुम, घर के अंदर है, और उनको मेरे ख्याल में कोई वो था कि आप जा नहीं सकते, ठीक है ये कर लो। इसमें ये होता है कि किसी के पास कितना मौका नहीं मिलता कि शोर शराबा करने का फलाना, हमारे यहाँ ये होता है कि
शोर ज्यादा किया जाता है और एविडेंस
नैब अगर किसी के ऊपर हाथ डालती है तो उसको हीरो बन जाता है,
हीरो बन जाता है।
यानी मुझे याद है कि हमदा शहबाज के ऊपर या शहबाज शरीफ के ऊपर आ रहे लोग बाहर खड़े हो गए, ये तो हीरो, तो फलाना, अगर कोई इस तरह का कोई पॉलिटिशियन आ गया तो वो चढ़ गया ऊपर। तो ये आपकी जो इदारे हैं वो मौका देते हैं, क्योंकि आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके इदारों पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है, ना गवर्नमेंट में करता है, ना अपोजिशन में करता है, तो क्या होता है कि वो हमेशा उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जहाँ तक रिकवरी, देखें ये भी अभी जो मलेशिया के अंदर जो हुआ, ये तो हमारा एक ऐसा लग रहा है कि वो बनता जा रहा है, कौमी वजीफा बनता जा रहा है, वजीरा बनता जा रहा है,
रोक लिया ना
हमारा वतीरा, सॉरी, सो हमें वतीरा बनता जा रहा है कि ये यहाँ से उन्होंने पैसे ले लिए अपनी मर्जी से उठा के, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर सोच रहे हैं कि हाथ डाल देंगे, मलेशिया के अंदर हमारा जहाज पकड़ के रख लिया, तो क्या अब दुनिया के अंदर हमारी जो जो चीज़ें क्या उनको, यानी ये आपकी मतलब आप सोचे क्या कहीं अमेरिका का कोई किसी की हिम्मत है कोई कर सकता है कि अमेरिकन किसी एसेट को आप पकड़ के बैठी है और वो चुप बैठा रहे नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या हो रहा है
हमें ऐसा हो कि वियतनामी जो गवर्नमेंट है वो इधर आ जाए कि यार ये आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ये पॉडकास्ट से जो पैसे कमा रहे हैं हमारे हमें दे
और क्लियर कर दें कि हम वाकई में कुछ भी नहीं कमा रहे इसके साथ।
नहीं हम लोग जॉब के जरिए जो वो है उस पर भी तो कर सकते हैं ना सैलरीज हम ऐसा ना हमारी हमको डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रही हूँ।
सही बात है। तो बहरहाल ये एक सिचुएशन है हमारी जो देखिए मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर आगे क्या होता है। तो
यहाँ देखते हैं कि
वैसे आपका क्या ख्याल है दानान भाई आप चाहेंगे कि
क्या
ब्रॉडशीट दोबारा केसेस ओपन करे और जाए क्या आप समझते हैं कि नैप को उसको दोबारा परस्यू करना चाहिए।
नहीं मेरे ख्याल में तो करना चाहिए उसके जो जो भी
लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि पहले नैप को ठीक किया जाए।
आई थिंक ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपको
यानी इतनी जिल्लत के बाद जो खुद ब्रॉडशीट ने हमें जलील किया पूरी दुनिया में
और इतने पैसे आपके जाया हो गए ना गवर्नमेंट का
भी जाया हुए और आपको सूद भी देना पड़ा
जो कॉन्ट्रैक्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमारे पीएम कहते हैं कि वो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा जानते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कम अज कम इस कंपनी के साथ कुछ ऐसा करें कि ठीक है तुम जो भी डिग आउट कर रहे हो अकाउंट डिग आउट कर रहे हो या जो भी तुम प्रॉपर्टी कर रहे हो ठीक है फिर उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं।
नहीं देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो पहले भी बड़ा अच्छा था इसी बेस पर तो वो जीत सकी है कॉन्ट्रैक्ट उसने इतना मजबूत बनाया था उसने कहा था अगर ये गवर्नमेंट पीछे हटी है तब
इदारा एज अ इंस्टीट्यूशन नैब में कोई मसला नहीं होगा ठीक है ना ऐसा
सुने बिल्कुल ये पूरा जो इंस्टीट्यूशन
जो यूज किया जा रहा है ना नैब को
हर इंस्टीट्यूशन को यूज नहीं किया जा सकता आप मुझे बताया ना कुछ इंस्टीट्यूशन इतने पावरफुल होते हैं और इस तरीके से उनको बाय लॉ उनको
पाकिस्तान कौन सा इदारा है जिसको यूज नहीं किया जा सकता।
मेरे ख्याल में कुछ इदारे हैं जिनको कम इस्तेमाल किया जा सकता है बनिस्बत दूसरे
मसलन
मिसाल के तौर पर आर्मी मेरे ख्याल में बहुत ही इंडिपेंडेंट है किसी के हाथ में नहीं आ सकती। अब वो किस वजह से नहीं आ सकती वो देखना
पड़ेगा वो यूज करती है बाकियों को
बाकी दूसरा मेरे ख्याल में
वो भी यूज हो रही है
दूसरा मेरे ख्याल में
वो भी तो यूज हो रही है
दूसरा मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट का सिस्टम है वो भी दूसरे इदारों के मुकाबले में बहुत हद तक अगर चाहे तो एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ उसको भी पैसे देके खरीदा जाता है उसके अंदर भी थ्रेट्स दी जाती हैं सब कुछ किया
देखें
लेकिन नैब ऐसा इदारा तो बिल्कुल सब उसका कौन लगाता है नैब का चेयरमैन कौन लगाता है
अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके।
हाँ तो अब क्या मतलब है कि अब जबकि कोर्ट के अंदर तो पूरी वो होती है ना और आर्मी के अंदर भी
जो जज होते हैं वो गवर्नमेंट ही लगाती है।
नहीं लेकिन आपके पास लिस्ट होती है ना मेरिट की यानी एक प्रोसेस होता है ऊपर आने का आर्मी के अंदर एक प्रोसेस है ऊपर आने का लोगों के नाम होते हैं।
आर्मी चीफ लगाने का कोई प्रोसेस नहीं होता किसी को उठा के लगा सकते हो मतलब
लेकिन होता नहीं है ऐसा ना
आपने देखा कोई कोई सीनियर पिछले जो
जो
जनरल राहिल थे वो सीनियर थे
नहीं
वो सीनियर
सीनियर ना भी हो कौन सा पीएम है जो अपनी मर्जी से लगाता है और उसके हाथों नहीं पिटाई खाता इसके बावजूद।
हाँ वो अलग पैसा है वो एक अलग
है ना क्यों है क्योंकि ऐसा इदारा आप आर्मी को नहीं चला सकते वो इदारा मजबूत है उसके लोग मजबूत है उसका स्ट्रक्चर है इसी तरीके से
इदारे को मजबूत करना है कि इदारे को खत्म थोड़ी ना करना है ना
नहीं खत्म करने की मैं बात ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि नैब क्यों एक्सप्लॉइट होता है इतनी आराम से क्योंकि उसका मकसद ये था जब वो बनाया गया था वो अकाउंटेबिलिटी था लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो मेरी पसंद की हो जो मैं चाहता हूँ उस तरह की अकाउंटेबिलिटी ये था ना मुशर्रफ साहब का भी ये था कि उनका नवाज शरीफ से खास लेना है तभी वो गए तो आई डोंट नो यानी नैब को किस तरह बेहतर करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो एक लेमैन हम सब यहाँ लेमैन है हमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता कि नैब हो सकता है उसके इदारे के अंदर बहुत मसाइल हो सकता है चंद मसाइल हो वल्लाह वालम लेकिन हमारे यहाँ एक जनरल ये
चलें इसको देखते हैं कि कमेटी भी क्या करती है और कि जैसे अभी इब्राहिम बेग बता रहे थे कि हमारे कुछ इदारे हैं जिनको यूज़ नहीं किया जा सकता लेकिन अभी पीछे मैंने खबर पढ़ी है कि हमारे एक्स ISI चीफ वो पिछले 2008 से रॉ के साथ
अपने
कनेक्शन में है।
हाँ
तो मैं तो शॉक हुआ था आप में से कोई शौक हुआ कि नहीं हुआ लेकिन मैं हुआ था कि यार ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया की सबसे अच्छी आर्मी दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी उसको पिछले 12 साल से
पता नहीं कोर्ट एंड कोर्ट कर रहे हैं कि नहीं है क्या यूं कोर्ट एंड कोर्ट आप वो कर रहे हैं।
मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी जो है ना वो ISI है लेकिन अब थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कि पिछले 12 साल से हमारा चीफ डबल एजेंट था
آئی ڈونٹ تھنک اے ڈبل ایجنٹ،
ڈبل ایجنٹ
از ٹو مچ. نہیں میں ایک بات
یار، یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا ڈسکشن ٹاپک ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میں جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کروں نا تو بلیک ویگو کھڑی ہو، اور میں چاہتا ہوں میرے رشتے دار ہی میرے ویلکم کریں. آپ لوگ
ہمارے جو پی ایم ہے وہ جمہوریت پہ جو ہے نا وہ بلیو کرتے ہیں، وہ ہر جو بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، آپ کھل کے بات کریں.
یار وہ تو خود ان کے ساتھ ہر روم میں وہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے مسکراتا ہوا بیٹھا ہوتا ہے،
آپ کھل کے بات کریں. نہیں اب تو باقاعدہ میڈیا میں یہ چیز آ چکی ہے ہماری.
ہاں میڈیا میں دیکھیں، میڈیا
ڈیفینس منسٹری نے کورٹ میں کہا ہے.
اچھا یہ وہی انہوں نے بک بھی پبلش کی ہے؟
جی ہاں یہ وہی ہے.
اچھا اچھا وہی ہے
اسد دورانی صاحب،
سب کو پتہ ہے اسپائی کرونیکلز آف،
پھر تو کوئی ایشو
نہیں. یہ وہ ہے جو کہ وہ بڑا مشہور آیا تھا الجزیرہ میں، ہیڈ ٹو ہیڈ جو آتے ہیں مہدی حسن جو جرنلسٹ، اس کے ساتھ یہی حساب تھے جنہوں نے فیس کیا تھا، اور اس کو بھی بڑا شور شرابہ مچا تھا، انہوں نے بڑے عجیب و غریب کچھ جوابات دیے تھے سوالات کے.
اے پی ایس حملے کے حوالے سے بھی وہی، اس پہ پورا انٹرویو تھا.
ہاں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ جو بھی میں نے اس وقت سنا تھا کہ کچھ کنٹروورشل باتیں انہوں نے کافی کی تھیں اس کے اندر نا، پروکیٹیو باتیں کی تھیں انہوں نے پروک کرنے کے لیے. تو کہنے میں سے تھی کہ اچھا یہ صاحب جو ہے کوئی ابھی تو کوئی ان پہ الیگیشن ہے نا، ڈبل ایجنٹ تو خیر کوئی ان کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ
یہ ہماری ڈیفینس منسٹری کہہ رہی ہے.
ڈیفینس منسٹری یہ نہیں، ڈیفینس منسٹری نے کہا کہ وہ انٹریکشن، ہی واز ریٹائرڈ، پہلے ایک بات کہ وہ کوئی ایکٹیو وہ جاب پہ نہیں تھے، وہ ریٹائر ہو چکے تھے.
دیکھیں
اصل میں ہوتا یہ ہے، میری میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو معیار رکھا ہوا ہے پولیٹیشینس کے لیے، وہی معیار ہمارا ہونا چاہیے سب کے لیے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف ایکس پی ایم بھی ہے، اور ایز این ایکس پی ایم جا کے وہ انڈیا کے جو بزنس مین ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مل بھی رہا ہے، اور ایکس ان کے پولیٹیشینس اور ایکس آرمی یا انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں، جس طرح وہ پتہ نہیں کس کا نام آ رہا تھا، وہ اسٹیل مٹھل اور پتہ نہیں
وہ جو
جندل جندل
اس کی برتھ ڈے منانے کے
جندل بھی ہے، اس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور آن وٹ مطلب یہ والا جو آپ کا جو ایکس پی ایم رہ چکا ہے وہ اس طرح کی انٹریکشن کر رہا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو سیبوٹاج کر رہا ہے.
نہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے جو پی ایم ہوتے ہیں، سیویلین پی ایم ہوتے ہیں، کیا ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں؟
نہیں پتا ہوتا،
نہیں پتا ہوتا نا، ان کو آپ چھوڑ، ان کو آپ سائڈ پہ رکھیں.
نہیں لیکن نہیں پتا ہوتا تب بھی کیا یہ صحیح ہے کسی ایک ایکس پی ایم اسپیشلی جو آپ کا ازلی دشمن ہے انڈیا، اس کے ساتھ مل کے اپنے پرسنل بزنس انٹرسٹ اور انٹرسٹ کے لیے جا کے وہ
ڈیفینیٹلی
نہیں ہونا چاہیے نا، ہم اس کو اصولی طور پہ اور اخلاقی طور پہ غلط سمجھتے ہیں.
ایک تو ہونا ہی چاہیے جو بھی پبلک اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کو کم از کم کوئی ایک 5 یا 10 سال کے لیے پابندی ہونی چاہیے کہ کسی باہر ملک سیٹل نہ ہو، دے آر سیکورٹی رسک.
یہ تو آپ مزے کی بات بتاؤں، ہمارے میں پیچھے گن رہا تھا ایک اسلم بیگ کو چھوڑ کے، ہمارے پچھلے جو پانچ آرمی چیف ہیں نا سارے پاکستان میں نہیں ہیں.
اب مشرف دیکھ لیں آپ، یہ
پاکستان زندہ باد،
کیا نہیں دیکھ
رہے صاحب، جنرل
راحیل صاحب نہیں ہیں، ہمارے ایکس جو تھے آئی ایس آئی چیف جنرل پاشا وہ نہیں ہیں وہاں پہ. تو نہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پاکستان کی خدمت ہی کر رہے ہوں گے، ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے.
لیکن یہ سوال یہ
نہیں کر رہے ہر ادارے میں کیوں اب خدمت کرنے، میں سوچ رہا ہوں اکثر اداروں میں اب خدمت کرنے آ جاتے ہیں نا،
بہت شوق ہے ان کو خدمت کرنے کا،
بہت ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے باقی سیویلین جو ہے نا وہ خدمت کے لائق ہی نہیں. خدمت
سول سروس ہماری اتنی کمزور ہو گئی، مطلب
آرمی میں آنے ہی، ہمارے آرمی میں بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اس لیے،
بہت ٹیلنٹڈ ہیں،
بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں،
لیکن سارا ٹیلنٹ پول ہمارا وہاں پہ مل جاتا ہے.
پچھلی کوئی یہ پوڈ کاسٹ میں آپ نے کچھ بولا تھا کہ یار میں تو پاکستان کو صرف یہی مانتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے 35-37 سال سے یہ پاکستان، کیونکہ آپ انڈر دا آرمی جو مارشل لا کے درمیان آپ مانتے ہی نہیں کہ پاکستان رہا ہے. اب آپ
تو کانسٹیٹیوشنلی یہ بات تو صحیح ہے، کانسٹیٹیوشنلی تو بات صحیح ہے نا، آپ نے ملک کا کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا اپنی مرضی سے، تو اب کون سا ملک ہے، کس کا لا اینڈ آرڈر ہے، وہ ایک سوال یہ نشان ہے. بہرحال میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسد دورانی صاحب جو ہے ان کے اوپر پہلے جو کیس ہوا تھا وہ ہوا تھا جب انہوں نے اسپائی کرونیکل جن کی کتاب تھی جو کہ بین ہو گئی تھی پاکستان کے اندر، بین ہوئی تھی
پتہ نہیں یہ والی ہوئی تھی کہ نہیں، لیکن
ان کی دو آئشن میرے خیال سے
پتا نہیں. بہرحال انہوں نے اس وقت کیا، اور انہوں نے یہ خود بولا انہوں نے اس کتاب میں کہ میں نے یہ لکھی ہے ایکس را کے کوئی
انٹیلیجنس،
وہ بھی ایکس تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کتاب لکھی ہے. ہاں تو ظاہر بات ہے کولیبریٹو افیکٹ ہوگی، انہوں نے اس کتاب کے اندر کچھ اپنی سیکرٹس وغیرہ شیئر کی ہیں پاکستانی سائڈ سے جو بھی ہے. آبویسلی ہیوج میسو سیکیورٹی بلنڈر ہے یہ، ٹھیک ہے، ناٹ رسک ناٹ تھریٹ، یہ ہو چکا ہے، یہ بلنڈر ہے آپ کو اپنے کنٹری کی. اور یہی چیز
کیا دونوں سائڈ سے ہے یا صرف ہماری سائڈ سے بلنڈر ہے؟
مجھے نہیں پتا ان کی سائڈ سے، ہم اپنی ان کا وہ اپنی سائڈ کا کریں گے دیکھیں گے کیا ہے. ہماری سائڈ سے یہ ہوا، اچھا شور شرابہ اس پہ ہوا، ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ٹو بی آنیسٹ اتنا شور شرابہ ہوگا. ان صاحب کو اوپر کیس ہو گیا، और उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। मेरे ख्याल में डिफेंस मिनिस्ट्री उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही
है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोर्ट में ये कहा है कि ये सिर्फ सिर्फ रॉ के साथ नहीं, और भी डिफरेंट कंट्रीज की इंटेलिजेंस के साथ इन्वॉल्व है।
अच्छा, यानी
बहुत बड़ा एलिगेशन है ये।
हाँ, अब वो किस कैपेसिटी में इन्वॉल्व है ये आना है मेरे ख्याल में, कि किस कैपेसिटी में इन्वॉल्व है, और सिंस 2008 इन्वॉल्व है। लेकिन जो रिक्वेस्ट आई थी इनकी तरफ से कि मुझे एग्जिट कंट्रोल से निकाला जाए और मैं ट्रैवल कर सकूं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम इसके अगेंस्ट हैं, इनको नहीं निकालना चाहिए जब तक इनके ऊपर से एलिगेशन हट नहीं जाते, और ये और इनफ एविडेंस अकॉर्डिंग टू देम कि इन्होंने कोलैबोरेट किया है। किस कैपेसिटी में, कि ऑब्वियसली दैट रिमेन्स टू बी सीन। कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए तो ऑब्वियसली हमें ये सोचना चाहिए कि हम मैं तो अगेन आप ये जो बात कर रहे थे ना इदारों की, ऑब्वियसली ये इदारे की गलती तो नहीं है, मैं इसको हम नहीं कह सकते कि ISI की गलती है, या ये एक फ़र्द की गलती है। एक फ़र्द है जो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, उसने निकला, उसने उस इदारे की और अपने मुल्क के साथ जो भी उसने गलत किया, इदारा क्या करता है इस पे, दैट इज़ द पॉइंट। क्या इदारा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, या इदारा भी कहता है कि नहीं इस बंदे के साथ कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इस बंदे को सजा होनी चाहिए, इस बंदे को, और जो जो हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग पॉलिटिशियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मैं कहता हूँ कि सही भी करते होंगे बहुत जगहों पर, कि यार ये गद्दार है, या इसने गद्दारी वाली बात की, इसने मुल्क का, मुझे
खुल के बयान करना चाहिए।
नवाज शरीफ साहब ने मुझे अभी भी याद है कि वो जो मुंबई अटैक्स हुआ था उसके बारे में उन्होंने जाके बाहर इतना ही कोई भोंडा किस्म का बयान दिया था, और भी चीज़ों के बारे में उन्होंने बड़े फजूल बयान दिए थे, जिसमें ये था कि भाई आप एज एन एक्स पी एम, इट मीन्स कि आपका अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स कम्स अबव ओवर एंड अबव एवरीथिंग एल्स, और उन्होंने आपकी आर्मी और इसके भी जो इदारे हैं उनके बारे में भी गलत बयानबाजी की थी, तो हम तो उसको भी कंडेम करते हैं। और जब लोग बोलते हैं कि यार इसने गद्दारी, ये तो गद्दारी के जुमरे में आता है, तो हम कहते हैं बिल्कुल आता है। तो यही चीज़ जब आपके एक्स मिलिट्री ऑफिसर सीनियर पोजीशन का बंदा करेगा,
ISI चीफ,
हाँ, तो क्या आप उसके लिए बोलेंगे कि ये जो ISI चीफ जो रह चुके हैं, इन्होंने भी जो काम किया, अभी तो प्रूव नहीं हुआ, वी विल सी कि किस कैपेसिटी में काम किया, लेकिन जो जो भी होगा तो हम देखते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजीज लगेंगी, क्या वो वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी या नहीं की जाएगी, या जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि एक क्लियर डिवाइड होता है कि नहीं अगर पॉलिटिशियन करेगा सिविलियन करेगा तो सिर्फ उसके लिए है, बाकी तो किसी में कोई वो है ही नहीं, कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई इस तरह का काम कर सकता। आई थिंक ये है जो कि हमें इसके ऊपर देखना चाहिए।
नहीं तो क्या इन लोग की कोई, आपके क्या ख्याल है कि इनकी कोई गाइडलाइंस नहीं होती होंगी ISI वगैरह की, कि यार जब हमारा बंदा छोड़ के जाए तो उसको क्या क्या वो बोल सकता है पब्लिक में, क्या क्या चीज़ रिवील कर सकता है कि नहीं, असल ये तो गाइडलाइन पता नहीं,
बिल्कुल होती है। और इस वजह से आपके अमूमन ऐसे केसेस नहीं आते,
नहीं आते।
लेकिन कहने का मकसद ये कि जब आ जाता है ये पब्लिक स्फीयर में आ गई ना बात, अब ये है कि वो उसकी नाम को और उसकी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या नहीं, दैट इज़ द पॉइंट। ऑब्वियसली हम ये तो, मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि इसमें इदारे की कोई गलती नहीं है, इदारा अपनी जगह बिल्कुल जबरदस्त काम करता है, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम ISI और नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम द आर्मी फॉर दिस।
उन्होंने
ये फर्द की गलती है, लेकिन
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्या हमें ये क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका चीफ, ठीक है ना, पिछले 12 साल से अगर वो था, अगर जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं, अगर वो सच है, तो क्या हमें ये क्वेश्चन करने की, हाँ, हमें ये क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं होना चाहिए कि कहाँ थे आप?
बिल्कुल, ये तो हो रहा है ना, यही तो केस चल रहा है, हाँ। कोर्ट में तो केस यही चल रहा है कि भाई
कोर्ट में
और अकॉर्डिंगली ये सुनने में आ रहा है कि इनकी और कुछ किताबें जो कि आनी है मंजर आम पे, जो उन्होंने लिखी है, ही हैज अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, जो एलिजिडली जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि शायद ये और कुछ चीजें रिवील करना चाह रहे हैं जिसको रोकना है। तो अब मैं आपको जैसे डॉन का ही आर्टिकल है अभी परसों का ही है।
अच्छा, सरप्राइजिंगली जो एक जनरल शाहिद अजीज थे उनकी एक बड़ी मशहूर किताब थी ये खामोशी कहाँ तक या कब तक, कोई ऐसा नाम था, वो किताब आने के बाद फौरन बैन हो गई थी क्योंकि एक किसी हमारे जानने वाले उन्होंने खरीदने की कोशिश की, तो उनको नहीं मिली कुछ अरसे बाद,
उन्होंने उसी वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान फोन किया।
अगर ये बुक पब्लिश हो रही है तो आई डोंट नो कैसे हो सकता है कि ISI या जो भी इसको देख रहा है उनको ना पता हो कि बुक में क्या लिखा हुआ है और कौन पब्लिश कर रहा है और किसके साथ कोलैबोरेशन हुई है इसमें, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है मतलब।
और एक और बुक भी थी खाकी कंपनी आयशा सदीका की, हाँ, वो ये दोनों बुक्स जब रिलीज हुई उनको पता था इसमें आर्मी के खिलाफ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा फौरन खरीदने से पहले कि बैन हो जाए पाकिस्तान में, उन्होंने फौरन खरीद।
इसमें जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा है कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कोर्ट में اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالا تھا ان کے خلاف کہ ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے. ایم آئی نے کیا تھا یہ؟ ہاں
ایم آئی سویلین ہے ویسے,
ملٹری انٹیلیجنس. ایم آئی سویلین نہیں, آئی ایس آئی اس کو رپورٹ کرتی ہے الیجڈلی. زیادہ سویلین ہے میرے خیال میں. نہیں ایک اس میں کون سی آئی بی ہے,
آئی بی جو ہے وہ ہے.
تو ایم آئی نے کیا ان کے اوپر,
چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کیس
فار ہز انوالومنٹ ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز, یہ اس نے لکھا تھا کہ انوالومنٹ ان اینٹی, یہ الیجڈلی انہوں نے کہا تھا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں, ہم ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جو بھی ہو انصاف کے ساتھ ہو اور لوگوں سے کچھ چھپایا نہ جائے, منظر عام پہ آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا ہوتا رہتا ہے.
بالکل.
تو یہ ہمارے ملک کی انفارچونیٹلی ایک ہمارے یہاں ایک لفظ ہے جو بہت پھینکا جاتا ہے ادھر ادھر, غدار ہے, ملک کا دشمن ہے, اسرائیلی ایجنٹ ہے, یہودی ایجنٹ ہے, فلانا ایجنٹ ہے, انڈین ایجنٹ ہے. یہ جتنا ہماری سیاست کے اندر ان چیزوں کے داغ تھوپے جاتے ہیں, افسوسناک ہے. ہر کسی کی جو حب الوطنی ہے اس کو کوشچن کیا جاتا ہے کہ یہ تو ملک کے خلاف ہے, اس کو محبت نہیں ہے, یہ بھی بڑا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کم ہونا چاہیے, لوگوں کو زیادہ میرے خیال میں طریقے سے اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے. اس سے میرے خیال میں آپ کے ڈویژن اور پولرائزیشن ہی ہوئی ہے.
آئی تھنک ون آف دا ریزن یہ ہے کہ جو بندے کو اپنی پارٹی, جو چینل جس بندے کی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اسی پارٹی کو سنتے, اسی چینل کو سنتے رہتا ہے, اور پھر وہی پولرائزیشن کریٹ ہو جاتی ہے. نیریٹو آپ کو ہولسٹک ایک اپروچ لینی چاہیے. آپ کو دو تین مختلف بلکہ چار پانچ جگہوں سے آپ سنیں. اب تو سوشل میڈیا پہ ہر کسی نے اپنا وہ بنا لیا چینل وغیرہ, آپ ان کو سنیں, پھر ایک اپنی رائے قائم کریں, اور پھر اس کے بعد بندہ
دیکھیں. کچھ تو ہے, کچھ تو obviously اینٹی اسٹیٹ رہی ہیں ہمارے اوپر. میں بول دیتا ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر جو پابندی لگی اور وہ جس قسم کی اب جو تقریریں کرتے ہیں وہاں سے یو کے سے بیٹھ کے, وہ تو پوری اینی کیٹیگری بدترین یعنی غداری کے اندر زمرے میں آتی ہیں. وہ
یعنی اگر وہ یہ تو ہمیں پتہ ہے, وہ بھی ایک لمبی بحث ہے کہ اتنا 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 عرصہ الطاف بھائی جو ہیں وہ کراچی پہ راج کرتے رہے.
ہاں یہ
وہ بھی کیوں کرتے رہے,
کیسے کرتے رہے,
کیسے کرتے رہے,
کیسے کرنے دیا جاتا رہا ان کو,
کے پیچھے ایم کیو ایم کو بنانے والا کون ہے, وہ ساری چیزیں. یہ
تو بہرحال اب وہ دیکھتے ہیں کہ
الطاف بھائی کے کراچی میں کیا نام ہے, ایک کرکٹ میچ بھی ہوا ابھی پیچھے, پاکستان اس میں جیتا.
اچھا
ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. کیسا لگا آپ کو میچ, دیکھا کسی نے میچ ہو؟
یار میچ تو بس پاکستان کرکٹ ٹیم کا فین اگر آپ ہیں نا, تو بس آپ اپنی کوئی میڈیسنز بھی لے کے ساتھ میں بیٹھے, کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ جیتا ہوا میچ کب ہار جائے پاکستان. تو بڑا اچھا ہوا کہ پاکستان جو ہے نا ساؤتھ افریقہ آئی 14 سال بعد اور جیت گئے. بڑی مشکل سے
14 سال بعد, یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ 14 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستانی سوائل کے اوپر کرکٹ انٹرنیشنل گیم دیکھ رہا ہے, ٹیسٹ.
اب یہ علیم دار,
یعنی کہ میں تھا 11 سال کا تھا تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی تھی.
نہیں ابھی ماشاء اللہ اب نہیں زیادہ بتا دیا آپ نے.
میں 11 سال کا تھا تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی تھی, اس کے بعد اب آئی ہے.
ساؤتھ افریقہ نہیں, سری لنکا کی ٹیم آئی تھی 14 سال پہلے ہی حملہ ہوا تھا.
نہیں لیکن اس سے پہلے, لیکن یہ
نہیں نہیں اس کے بعد
2007 میں میرے خیال سے ساؤتھ افریقہ آئی, 2009 میں نہیں ہوا یہ
حملہ,
2009 میں سری لنکا کے اوپر.
تو 11 سال بعد انٹرنیشنل یعنی ٹیسٹ کرکٹ ہوئی ہے
ہماری. ہاں ساؤتھ افریقہ 14 ایئرز بعد آئی ہے, بٹ جو پراپر جو ٹاپ 8 نیشنز ہیں کرکٹ ٹیسٹ پلینگ نیشن, ان کی جو ایک اچھی ٹیم جو آئی ہے وہ ابھی آئی ہے.
اس سے پہلے زمبابوے آ چکی ہے,
یہ زمبابوے
چھوٹی ٹیم تو آ چکی ہے. اب یہ دیکھیں علیم دار جو ہیں, جو ایلیٹ امپائر پینل ہیں, اس کے سب سے جو ایکسپیرینسڈ اور سب سے جو پرانے امپائر ہیں, انہوں نے پہلے میچ میں وہ اسٹینڈ کر رہے تھے ایز اے امپائر پاکستان میں. تو انہوں نے بھی بڑا ایموشنل ٹویٹ کیا تھا کہ میرے لیے بھی ایک اچیومنٹ کہہ لیں کہ
میں نے, سوچے ہم علیم دار کا نام سنتے آ رہے ہیں,
130 پلس ان کے میچز ہو گئے ٹیسٹ,
بچپن سے نام سنتا آ رہا ہوں, 130
پلس
130 نہیں 130
ہاں ٹیسٹ میچ, جی جی,
اور 130 پلس ٹیسٹ میچز انہوں نے امپائرنگ کی.
فرسٹ ٹائم اپنے ہوم گراؤنڈ پہ وہ کر رہے ہیں, مطلب اپنی کنٹری میں وہ امپائرنگ کر رہے ہیں ایز کسی انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ میں.
کتنی یار اصل میں یار وہ اتنی محرومی, مطلب آپ سوچیں اکثر یہ جو فینز ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں, ان کو اپنے کرکٹر سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے, اور وہ سوچیں آپ وہ نہ, کیونکہ جب یہ سارے اپنے گراؤنڈز کے اندر یہ سارے پلیئرز وغیرہ آتے ہیں تو وہ اپنے کبھی کبھار میموریبلیا کے طور پہ اپنے کبھی بیٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں کراؤڈ کے اندر بانٹ دیتے ہیں. مطلب ہمارے बच्चों को जो उनको एडमायर कर रहे हैं बस टीवी के थ्रू ही एडमायर कर सकते हैं, वो कहीं पे उनसे मिल नहीं सकते। हाँ,
सही बात है।
कितनी
मुझे,
एक वो
मुझे याद है, पता नहीं कौन था कराची में, मेरे कई कजन थे, वो बता रहे थे कि जैसे किसी के पास था कि इस मैच के अंदर वो विकेट होती है ना वो ले ली उसके इंटरनेशनल मैच का, उसमें ये हुआ था, बॉल मिल गई, बल्ला मिल गया, कुछ इस तरह की चीज, बड़ा एक लेगेसी होती है यानी।
और बल्कि बड़ी इंस्पायरेशन का बायस बनती है ये चीज़ कि वो बंदा मे बी आई थिंक वो इस चीज़ों से इंस्पायर होकर वो आगे क्रिकेट में पहुंच जाता है। कितने लोग
वैसे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह मैच जीता है ये क्या ये कंपेयर किया जा सकता है जिस तरह अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आया है, क्या ऑन द सेम लेवल, या हमने अपनी तारीखी तौर पे उसी तरीके से कि हमारी बैटिंग ऑर्डर शुरू की टॉप पे वो फेल हो गई और फिर आगे फिर जाके हमारे जो मिडल ऑर्डर है उसने फिर
आपको लग तो ये रहा है कि 7 विकेटों से हम जीत गए मगर ये मैच क्लोज गया काफ़ी फंसा हुआ था, 2-3 जगह पे फंस गया था। वो साउथ अफ्रीका को एक तो कोई वार्म अप मैच नहीं मिला क्योंकि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है।
फवाद ने बड़ी अच्छी बैटिंग,
फवाद आलम ने, वो यार डोमेस्टिक में 15 साल से वो यही करते आ रहा है, उसने कितनी कराची उसका होम ग्राउंड है, उसने कितनी इनिंग ऐसी खेली होंगी वहाँ पे, तो उसको आदत,
न्यूजीलैंड में भी बड़ी अच्छी
एग्जैक्टली खेली, तो वो वहाँ से मैच निकाल गया। वरना ये क्योंकि जाहिर सी बात है नए साउथ अफ्रीका अभी इन्होंने लैंड किया 2-3 हफ्ते पहले और कोई डोमेस्टिक इनको मैच भी नहीं मिला, वरना कोई ए टीम आपकी खेलती है, क्लब टीम कोई एक 4-डे मैच खेल लेती ताकि प्रैक्टिस हो जाए, वो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन थी वो नहीं खेल पाए, फिर भी इन्होंने जैसे भी प्लेयर्स थे अपने, इनकी फुल टीम थी ऑलमोस्ट, इनके अच्छे प्लेयर्स थे साउथ अफ्रीका की, तो बस ये पाकिस्तान किसी तरह बच गया है यहाँ पे, मुझे तो ऐसा लगता है। ये 7 विकेट्स ये आपको लग तो रहा है बड़ा मार्जिन है मगर ये है कि क्लोज था मैच, ये हार सकते थे 2-3 जगह पे, उन्होंने खुद ब्लंडर कर दिया 2-3 जगह पे, तो वो ये केस हो गया
हमारे फेवर में आ गई बात।
वो जो जहाँ तक आपने बात की इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो मेरे ख्याल से रीसेंट हिस्ट्री में जो टेस्ट सीरीज हुई है उसकी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज थी।
सबसे बड़ा अपसेट हुआ है ये तो,
बहुत अपसेट हुआ है और मेरे ख्याल से हम अच्छा ही है आजकल इंडिया से नहीं खेलते हम, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि वो कोई मैच ही नहीं हमारा बन रहा, वो इतने
नहीं बनेगा। असल में जो पहला मैच हुआ था जिसके अंदर पूरी इंडियन टीम जो पूरी वो हो गई थी, क्या नाम है,
36 पे ऑल आउट हो गई,
36 पे, तो वो तो वाकई लग रहा था कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही बेकार है, लेकिन क्या हुआ था वो नहीं समझ।
असल में वो पहला टेस्ट मैच था और वो पिंक बॉल से था, और पिंक बॉल से जो होता है ना वो मुश्किल होता है खेलना जिसको आदत ना हो, जो भी टीम्स पिंक बॉल से मैच खेलती हैं टेस्ट मैच की जो बॉल होती है उससे इनको मुश्किल होती है। और मुझे याद है जैसे ही वो मैच ख़त्म हुआ है जो ऑस्ट्रेलियन जो कमेंटेटर्स थे जो फॉर्मर प्लेयर्स थे उन्होंने रूल आउट कर दिया कि ये सीरीज़ 4-0 पे जाएगी और ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप करेगा, और सारे जो है ना सब ने बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये बात कर दी। और पाकिस्तान में एक बड़े मशहूर विकेट कीपर राशिद लतीफ़ उन्होंने बड़ा एक मॉडेस्ट सा ओपिनियन दिया था कि जो पिंक बॉल होती है उसमें हमेशा मुश्किल होती है, और आप कोशिश करें जो आपके फॉरेन टूर्स है उस पर पिंक बॉल से मैच ना रखवाएं क्योंकि किसी को आदत नहीं है नाइट में लाइट्स में ना।
क्यों रखी है पिंक बॉल ये?
नहीं वो असल में वो चाह रहे हैं कि जो टेस्ट मैच है वो लोग रात को भी देखने
हैं, डे
एंड नाइट उसको करें, वरना डे में खत्म होता है असर के बाद मैच खत्म हो जाता है जब लाइट फेड हो रही होती है, वो रीडिंग ले लेते हैं उस वक्त, जो रीडिंग पहले दिन की होती है वही सारे दिन अंपायर्स नोट करते हैं। तो पिंक बॉल इंट्रोड्यूस करने का मकसद ही यही था कि जो सुबह, क्योंकि हर कोई बिजी होता है सुबह नहीं आ सकता मैच देखने, तो डे एंड नाइट कर दें जिस तरह वनडे होता है T20 होता है तो लोग आके देख सकें, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों टीम्स के दरमियान के जब भी हमारी कोई सीरीज हो कोई एक मैच लाजमी पिंक बॉल का आप कर लें। तो इन्होंने गलती की, वो पहला मैच इनको उनके बैट्समैन को समझ नहीं आई, अब दूसरे जो मैचेस हुए उसमें तो इंडिया ने बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और वो बिल्कुल ही आउटक्लास कर दिया हमें।
नहीं तो ये जब ये पिंक बॉल का मुझे याद है एक पाकिस्तान और आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी हुआ था जब इन्होंने दुबई में रखा था, तो उसमें तो उसने
अजहरी ने 300 मारा जो ट्रिपल की वो अजहरी ने की, वो डिपेंड करता है वो कुछ पिचेस का भी डिफरेंट होता है, दुबई की पिच जो है नॉर्मल एग्जैक्टली फ्लैट पिच होती है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ इन्हें ड्रॉप इन पिचेस अब बनाई हैं वो वरना हटा देते हैं पिच को वो कवर कर देते हैं कोई और ग्राउंड के लिए इस्तेमाल हो जाती है कोई और पर्पज़ के लिए, तो उसका भी कुछ बाउंस का भी इशू आता है, मगर वो किसी तरह इंडिया जो है वहाँ फंस गई। मगर उन्होंने बाद में जो परफॉर्मेंस दी है मेरे ख्याल से ये इनके यूनिट आगे बन रहा है, इन्होंने इनके 6 या 7 प्लेयर को इंजर्ड हो गए थे ऑन द टूर, उनके जो बैकअप प्लेयर्स आए हैं मतलब इनका इतना अच्छा सिस्टम है कि इन्होंने एट अ टाइम मुझे लगता है 2 टेस्ट टीम आराम से खिला सकते हैं।
ओ भाई कोहली साहब का जो बेटा हुआ है क्या हुआ है
पता नहीं बच्चा होगा
बेटा होगा तो
बेटी हुई तो अल्लाह उसके नसीब बच्चे करे, बेटा हुआ तो अल्लाह उसको
ہدایت دے.
نہیں تو نہیں نصیب کسی اور کے ہے, ہدایت دے بیٹی
دونوں کے تھرو کسی اور کے نصیب بچے.
ہدایت تو ساری باتیں ہم دعا کرتے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بیٹا بھی ہوا ہوگا تو وہ میرے خیال میں ایک ڈیڑھ سال کی عمر میں پہلی سینچری کر لے گا اس کا بیٹا.
نہیں میں میرا یہ کوشچن ہے کہ پاکستان کی ٹیم کیوں اتنی پیچھے جا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟
اب دیکھیں تو آپ پوچھیں اپنے ان پی ایم سے جو کہتے ہیں مجھے دنیا کے بارے میں سارا کچھ پتا ہے,
سب کچھ پتا ہے,
اور وہ 92 کا ورلڈ کپ بھی, اور انہوں نے بولا تھا کہ میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا پاکستانی ٹیم کس طرح, میں اس کو ادارے کو بنا دوں گا.
یہ تو آگے اپنے بندہ انہوں نے لگا دیا, یہاں تو آئے تھے انہوں نے, کیا نام تھا,
احسان مانی, خیر انہوں نے آئی سی سی میں.
آپ دیکھیں کہ فواد عالم کو 10 سال کے بعد چانس ملا ہے. مجھے خود فواد عالم کا بیٹنگ سٹائل مجھے نہیں پسند, ٹھیک ہے نا, میں اس کا فین نہیں ہوں بالکل بھی, لیکن اس بندے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی.
ہاں وہ ڈیزرو, جب آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو بٹھا کے رکھا ہوا تھا ٹیم میں جو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے عرصے سے, اور ایسا بندہ ہے.
ٹیسٹ ٹیم میں جو ہے نا ایک انجن ہے کرکٹ میں, آپ کو لیجنڈز بنانے پڑتے ہیں تاکہ جو نیکسٹ جنریشن آئے وہ ان کو فالو کرے. جب پاکستان 2009 میں ان کو بین لگا اور پاکستان کی جو ٹیم دبئی میں پھر ہوم گراؤنڈ بن گیا ان کا, اس کے بعد اور اوپر سے مسئلہ ماسر یہ ہو گیا عامر اور آصف کو بھی بین لگ گیا. پاکستان میں 3-4 ڈومیسٹک بالرس تھے ان کے ایکولنٹ جو اچھا کھیلتے تھے, ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں سلیکٹ کیا انہوں نے. ان کو مصباح الحق کو تو اچھا انہوں نے ٹھیک ہے آؤٹ آف دا وے لے آئے, ان کو مصباح الحق کو کیپٹنسی دی انہوں نے ایکسیپٹ, حالانکہ یونس خان اس وقت ان کی باری بنتی تھی, یونس خان ایک ٹیم پلیئر ہیں تو انہوں نے جو ہے نا اتنا ایشو نہیں کیا, ان کا بھی ان دنوں مسئلہ چل رہا تھا. ڈومیسٹک کرکٹ میں اس وقت تابش خان جو تھے کراچی سے کھیلتے ہیں, ان کی ڈومیسٹک کی میں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ 598 وکٹس ہیں فرسٹ کلاس جو کہ اکولنٹ ٹو ٹیسٹ کرکٹ, 598 وکٹس. اینڈرسن کی ابھی 600 ہوئی ہیں, مطلب یہ لیجنڈری کیٹیگری میں ہوتا ہے, تابش خان ابھی کھیل رہا ہوتا ہے, اور اس کی ایوریج بھی 21 کی ایوریج, جو وقار یونس وغیرہ کی 22-23 کی ایوریج ہے. پھر ایک اور بالر تھا صدف حسین, اس کی بھی یہی وہ لیفٹ آرم بالر تھا, یہ رائٹ آرم ہے تابش خان, اس کو بھی نہیں کھلایا انہوں نے. اور اس طرح کے بہت سارے پلیئرس ہیں جن کو بہت لیٹ لے کے آیا یا تو کھلایا نہیں, سہیل خان تھا اس کو بھی نہیں کھلایا, کیونکہ عموماً اور جنید خان کو بھی ہم نے ضائع کیا, اس نے 2002 میں آ کے انڈیا میں بڑی زبردست پرفارمنس دی تھی. اور جنید خان یہی اکثر جو گلہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے کہ جب دبئی میں میچز کھیلے اس میں اس کو کھلا لیا, جب جو سپورٹنگ پیچز تھی
نیوزی لینڈ کی
وہاں نہیں لے کے گئے اسے, تو انہوں نے خود جان بوجھ کے کیا اس طرح. اور کیونکہ آپ کے ٹیسٹ لیجنڈز ہی نہیں بنے, اب نہ کرتے کرتے معین علی جو ہے وہ 70 ٹیسٹ میچ کھیل گیا کہ ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتا ہے, 70 ٹیسٹ میچز آرام سے کھیل گیا. ہمارے ابھی یاسر شاہ کے اتنے نہیں ہوئے, سرفراز کے اتنی نہیں ہوئے, دو پلیئرز ہیں اظہر علی جس کے 70 پلس ہیں, 78 کچھ ہیں, اور اسد شفیق ہے. حالانکہ اسد شفیق کے اور ان دونوں کو 100 ٹیسٹ میچ کا جو ایک مارک ہے کراس کرنا چاہیے دونوں کو, کیونکہ ٹیسٹ میچ میں آپ کے ورنہ لیجنڈز نہیں بنیں گے تو اور پلیئرز بالکل نہیں آئیں گے. فواد عالم کی مثال ابھی آپ کے سامنے, پورا اس کو کیریئر ضائع کر دیا انہوں نے. 2-3 اور پلیئر ہیں جو ڈومیسٹک میں جو ہے ان کو اگر یہ لے لیں تو ابھی بھی ٹیسٹ ٹیم ان کی بہت اچھی بن سکتی ہے. تو یہ اب میرٹ پہ سلیکشن کریں تو
نہیں, تمہارے خیال میں کہ ابھی بھی اس پوائنٹ پہ بھی جو بھی ہمارا چیف سلیکٹر ہوتا ہے اور جو بھی چیئرمین ہوتا ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے اس وقت بھی, یعنی کس بیس پہ سلیکشن ہوتی ہے؟ میرٹ پہ نہیں ہوتی تو کس بیس پہ ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں الیگیشن ہوتا ہے نمبر 1 پولیٹیکل, خاندان, عصبیت, پروونشلزم کے اوپر بڑا آتا ہے کہ وہ اس کا فلانے کا یہ ہے, یا جس کی پرچی ہو پیچھے سے پیسہ جس نے زیادہ دیا ہو, یا جو بزنس مین ہو بڑی فیملی کا ہو, یعنی کوئی تو آپ کا وہ ہونا چاہیے نا اس کے اندر کہ بندہ جا کے امید لگا سکے کہ یار فلانا بندہ آئے گا تو شاید ان لوگوں کو اپرچونیٹی ملنا شروع ہو جائے, جس طرح آپ نے بولا کتنے لوگوں کا کیریئر برباد ہوئے.
اصل میں جب مسئلہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, جو پاکستان کا پیٹرن ان چیف ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے ہمیشہ, ابھی عمران خان ہے, پہلے نواز شریف تھا, اس سے پہلے زرداری تھا. اب جب چلیں یہ ہاں ایگزیکٹلی جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ یہی ہوتا ہے. اب یہ تو اتفاق سے ابھی عمران خان نے کرکٹ کھیلی ہوئی, ورنہ جو پہلے آتا ہے وہ اپنے ساتھ وہی پولیٹیکل سوچ کے لوگ لاتا ہے. اب ان لوگوں کو اپنا جو ڈیوریشن ہوتا ہے, جو بھی ٹینیور ہوتا ہے, ان کو بڑھانا ہوتا ہے, تو وہ سب سے انکمپیٹنٹ بندے لاتے ہیں تاکہ اگر کوئی پرفارمنس خراب ہونا تو اس چیف سلیکٹر پہ بلیم دے دیں, یا اس کوچ پہ بلیم دے دیں, یا اس ایسے کپتان پہ بلیم دے دیں جس کی ویسی پوزیشن نہیں بن رہی ہو ٹیم میں, تاکہ ان کو آسانی سے ہٹا سکیں اور ان کا ٹینیور آگے چلتے رہے. یار دیکھیں ہم نے تو کوچ لائے تھے اور یہ جو تھا کوچ نے پرفارم نہیں کیا, وہ کیپٹن پہ ڈال دے گا, تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں.
وقار یونس اچھا کوچ تھے؟
وقار یونس میں مانتا ہوں کہ بہت بڑے لیجنڈ تھے, اور وقار یونس جیسے بولر ابھی بھی
کیا وقار یونس کی کوچنگ نے بولنگ کوچ نے اور ایز اے کوچ اٹسیلف کیا پاکستان ٹیم کو خراب کیا؟
میں سمجھتا ہوں نا, میں ایک
خراب کیا آپ بتائیں.
میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس وہ کیا نام تھا اس کا, کراچی کا وہ تھا جو انڈر 17 انڈر 19 ورلڈ کپ میں بڑی اچھی پرفارمنس کی تھی, مجھے نام اس کا ذہن سے نکل رہا ہے.
وہ تھا جس نے وہ انڈیا کے خلاف جو دھکا دھک وکٹیں اٹھائی تھیں, انور علی
کو خراب کرنے والا, ٹھیک ہے نا, یہ وقار یونس ہے. اس نے اس کا ایکشن چینج کیا, اس کے بعد اس کی ساری ان سوئنگ ختم ہو گئی.
نہیں خیر اس کا ایکشن چینج کسی شولڈر کا آپریشن ہوا تھا,
یہ بھی میں نے سنا تھا. اچھا وقار یونس کی آپ نے بات کی, وقار یونس ٹھیک ہے بہت بڑے پلیئر تھے, مگر جو اس ٹائم پہ جو اسٹوری سینئرز کی, جو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایگو اتنی ایگوئسٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کلیش اتنا ہوتا ہے
ایگزیکٹلی,
تو ان کا سنا یہ آتا ہے جو میں نے فارمر ان کے جو کلیگس تھے کرکٹرز اس زمانے کے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نا ایگوئسٹک بہت ایشوز تھے, تو انہوں نے کچھ بدلے لینے کے لیے بھی یہاں پہ اپنی جو ہے نا باقی پلیئرس کے بھی کیریئر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اور ایک بڑا زبردست عاقب جاوید نے ایک بیان دیا ابھی کہ وقار یونس ان کا تیسرا ٹرینر ہے کوچنگ کا, اور کسی بھی جب ٹرینر میں آئے پاکستان کی بالنگ اچھی نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا جب وقار یونس پہلے تو ان کے پاس کوئی لیول 1 لیول 2 لیول 3 کوچنگ انہوں نے پاس ہی نہیں کی ہوئی, اور جب یہ کوچنگ سے ہٹے ہیں انہوں نے اس کے بجائے اس کے کہ میں ایک ڈومیسٹک ٹیم کو کوچ کروں, انہوں نے جا کے کمنٹیٹر بن گئے, تو اس سے کہاں سے سیکھیں گے کوچنگ؟ تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا اور یہ اچھا پوائنٹ ہے, کامن سینس ہے کہ یار آپ کو کوچنگ سیکھنی ہے آپ جائیں کوئی کلب کوچنگ کریں. بے شک انہوں نے تو میرے خیال سے آسٹریلیا میں پرماننٹ سیٹلڈ ہے, کہاں پہ ان کی وائف آسٹریلیا میں موسٹ پرابلی, تو وہاں جا کے کوچنگ کر لیں. تو انہوں نے ابھی بھی آ کے آپ یہ دیکھیں پاکستان نے ایک تو یاسر شاہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ہم لوگوں نے, وہ پہلے دن ٹیسٹ میچ کے 30 اوور کروا رہا ہوتا ہے جو کہ لیگ اسپنر نہیں کرواتا ہے. لیگ اسپنر کا کام میجر یہ ہوتا ہے جو تھرڈ فورتھ اننگ میں اگر آپ کی بالنگ آئی ہے اس میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بالر ٹرین ہی نہیں ہوئے, وہ وکٹیں ہی نہیں لیتے پہلی اننگ میں, جو یاسر شاہ کو آ کے پورا اپنا جو ہے نا مائلیج اس کی ختم ہو رہی ہے, ہم ایکسٹرا یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ بھی, اس کی بھی ایک تو فٹنس
50 اوور
ایگزیکٹلی وہ ایک ایک اننگ میں, پہلے اننگ میں کوئی لیگ اسپنر نہیں کرتا اتنے اوور, تو یہ بڑا ایک ڈرا بیک ہم نے کیا. ورنہ یاسر شاہ کے بھی 230 وکٹس ہیں, وہ آرام سے 300 کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے اگر ہمارے فاسٹ بالر وکٹس لیتے, اس کو سپورٹ ملتی دونوں طرف سے. کیونکہ ہمارے فاسٹ بالنگ میں ابھی ریسنٹلی بس عباس آیا ہے جس نے اچھی ایک جو ہے نا بالنگ کی تھی, وہ بھی 36 پلس ہو گیا تھا تو وہ پیچھے چلا گیا. اب یہ ہے کہ راحت علی بھی تھا, اس کو بھی صحیح ٹرین نہیں کیا گیا, اس کو دبئی میں کھلاتے گئے یہ لوگ, وہاں نہیں گئے دوسرے ٹورس پہ لے کے گئے اس کو, انہیں آؤٹ رہا وہ. تو اب دیکھیں ابھی بھی انہوں نے جو ہے سعود شکیل ہے اس کو کھلایا وہ کراچی. اچھا ایک تو یہ بھی بڑا چلتا ہے کہ کراچی کے پلیئرس کتنے آ رہے ہیں ٹیم میں, لاہور کے کتنے آ رہے ہیں, یہ بھی بہت ابھی تک چلتا ہے, یہ بچپن میں ہم سنتے تھے, ابھی بھی یہ کافی ایشوز ہیں. تو دیکھیں ابھی بھی میرٹ پہ اللہ کرے, ابھی انہوں نے چیف سلیکٹر لگائے ہیں ہمارے محمد وسیم جو کہ اتنے مشہور پلیئر نہیں تھے, بٹ انہوں نے ڈومیسٹک ٹیم کی ابھی کوچنگ, ناردرن کی ٹیم ہے جو ڈومیسٹک کھیلتی ہے, اس میں اسلام آباد کا ریجن آتا ہے اور ارد گرد کے راولپنڈی کا ریجن آتا ہے, تو اس ٹیم کو انہوں نے کوچنگ کی تھی ریسنٹلی, 2-3 ٹورنامنٹ بھی جیتے تھے, تو اس بیس پہ ان کو چیف سلیکٹر لائیں گے لوگ ہوپ فلی. اب دیکھیں انہوں نے جیسی بھی ٹیم سلیکٹ کی ہے 2-3 انہوں نے اچھے,
لیکن یہ بھی بات زوم کرنا ہے کہ ایک چیف سلیکٹر کے آنے سے کوئی بہت بڑا فرق آ جائے گا آپ کے سسٹم میں؟ چیف سلیکٹر تو ایک بندہ ہے, کیا پوری جو بیوروکریسی ہوتی ہے اور جس طرح اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو بھی ایم پریٹی شور ادھر ادھر آگے پیچھے سے پرچیاں آ رہی ہوتی ہیں, تم یہ کرو فورس کرو تھریٹ کرو یہ کرو, وہ کچھ کر پاتا ہے کیا؟ اس کے بعد اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ واقعی کوئی بڑے ڈیسیجن لے سکے یا نہیں لے سکے, آئی ڈونٹ نو. اب جیسے مصباح الحق کو ہٹایا پھر ان کو بنایا, بھی تھا اور ہیڈ کوچ بھی تھا, اب مصباح الحق ہیڈ کوچ ہے, کیا ایز اے ہیڈ کوچ وہ کیا بہت اچھا پرفارم کریں گے؟ یعنی وہ لوگوں کی کچھ وہ کر سکتے ہیں ٹیم کے لیے؟ وٹ ڈو یو
تھنک؟ اصل میں نا یہ جو ماڈل انہوں نے سلیکٹ کیا تھا نا, یہ کوئی نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا کا کوئی ماڈل تھا, انہوں نے جو ایک ہی چیف سلیکٹر ہو اور وہی کوچ بندہ کوچ.
لیکن مصباح الحق کیوں؟ مجھے اس کی پھر کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی.
بڑی تھیوریز ہیں بٹ آئی ڈونٹ نو, اب آپ کو جو سوٹ کرتی ہے وہ آپ اس کو ابزارو کر لیجیے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ میاں والی کے ہیں, تو مصباح الحق صاحب جو ہیں وہ بھی نیازی ہیں.
I don't think so.
ایک یہ بھی ہے, آئی ڈونٹ نو, ویسے ایک کہیں میں نے سنا تھا
عمران خان نے کہا کہ مصباح الحق کو لگاؤ جائے گا,
یہ تو چلے
میں نہیں بائے کروں گا.
چلے ٹھیک
ہے,
دوسری تھیوری یہ کہ عمران, کیونکہ مصباح الحق انہوں نے ان کی کیپٹنسی میں پاکستان سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ جیتا ہے, تو عمران خان وہاں سے کچھ اپنی پرسنالٹی یا اپنا کرکٹنگ کیریئر ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک سکسیزفل ٹیسٹ میچ کیپٹن ہے تو وہ
और प्लस एम बी ए भी किया उन्होंने, थोड़े एजुकेटेड भी हैं तो वैसे एम बी ए मैंने भी किया तो
एनजी भाई ने एम बी ए नहीं किया था
ये आपने मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के बजाय इन्हें आपने बोल दिया था आर्टिस्ट है,
बहुत अच्छे बैट्समैन है, एनजी भाई ने नहीं किया था लेकिन बैट्समैन बहुत अच्छे थे।
ये ठीक है, मिसबाह उल हक की जो रिज्यूमे है वो इस लिहाज से बड़ी अच्छी है कि इन्होंने एक ऐसे वक्त में टीम को लीड किया जब कोई लीड करने के तैयार भी नहीं था, बहुत मुश्किल टाइम पे था। अच्छा मिसबाह उल हक की एक अच्छी चीज़, चले हम लोग नेगेटिव चीज़ से बड़ी आजकल टी वी में सुनते हैं, कि उनकी पॉजिटिव चीज़ ये थी कि वो जो भी इनको, वो एक तो यस मैन है, ये तो अब आपको नहीं पता, तो उन्होंने क्योंकि वो जब कैप्टन बने हैं वो 36 साल के उस वक्त थे, अब वो उस वक्त बोर्ड के साथ जो एक टसल करें कि यार मुझे ये बंदा चाहिए डोमेस्टिक, वो ये नहीं कर सकते थे, वो यूनुस खान नहीं थे, यूनुस खान इस मामले में इनसे बड़े डिफरेंट थे, यूनुस खान ने कहा भी है कि मैं मिसबाह उल हक से इस मामले में डिफरेंट हूँ, वो बात सही की है। खैर मिसबाह उल हक को जो भी रिसोर्स मिले इन्होंने टीम बनाई और उनसे अच्छा यूटिलाइज जो है ना कर लिया, ये एक मिसबाह उल हक की अच्छी क्वालिटी थी,
जो कुछ मिला उसी को
उसी से
जितना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, जितना बेटर,
यानी आप ये कह लें कि ना वो यूनुस खान थे ना वो इमरान खान थे, इमरान खान तो बहुत स्टबर्न था अपनी क्रिकेट सिलेक्शन, कहते मैं खुद ही करूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं उसकी नहीं सुनूंगा।
तो अब ये जो डुअल पोजीशन थी, ये एक तो पाकिस्तान की आप आबादी देख लें ना, कितनी जितने आपकी क्लब्स टीम थी और जितनी डिस्ट्रिक्ट है, खैर वो भी इन्होंने अभी इमरान खान ने खत्म कर दी, बस 6 टीमें रह गई हैं, उसकी फर्स्ट 11 खेलती है, सेकंड 11 खेलती है, तो क्लब क्रिकेट वहाँ से भी रही है। तो उन्होंने ये मॉडल जो मैं बात कर रहा था पहले कि डुअल रोल इस केस में दें, अब आप सोचें एक चीफ सेलेक्टर जो है वो क्या क्या करेगा, वो जाके डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं वो भी देखेगा, या वो यहाँ आके सबको जो है कोच भी करेगा, तो ये बड़ा एक हैवी टास्क था, और प्लस वो पीएसएल टीम के भी कोच हैं।
अच्छा।
तो ये तीन ड्यूटीज थी इनके ऊपर। और
वैसे मैं मेरे जहन में है, अगर यही चीज डुअल रोल जो है वो मिसबाह उल हक के बजाय यूनुस खान को दिया जाता, आप क्या समझते हैं?
यूनुस खान है ना, यूनुस खान बैटिंग कोच है,
भी यूनुस खान को, यूनुस खान के बारे में एक रेपुटेशन है, जो यूनुस खान की एक रेपुटेशन ये रही है हमेशा कि ये बंदा पॉलिटिकली नहीं खेलता था ज्यादा, ये सीधा था लोगों के साथ, इसने करियर को नहीं खराब किया, ये ज्यादा साइडें नहीं लेता था, ये बोर्ड के हवाले से भी, और क्लीन करियर थ्रू आउट, और वेरी हम्बल, ठीक है, और उसने आपको T20 भी जिताया, उसकी उसमें रहते हुए हमने वर्ल्ड कप भी जीता, तो एक अच्छा नाम है। और लेकिन यह है कि उसके खिलाफ बहुत लोग थे, यूनुस खान के खिलाफ बहुत बड़ी ऑपोजिशन थी टीम के अंदर कुछ लोगों,
ये जब डोमेस्टिक हमारा जो इन्होंने सॉरी जो T20 वर्ल्ड कप जीता है उसमें ही इतने लोग खिलाफ थे, और मैंने शायद अगर मैं सही हूँ शायद अफरीदी को कहते हुए सुना है कि हम में से जो 11 में से 5 लोग थे वो आपस में दूसरे से बात नहीं कर रहे थे उस टूर्नामेंट में, तो आप ये सोचिए उस वक्त, और ये 2009 में इनके साथ बड़ा मसला हुआ बोर्ड के साथ, ये चले गए, इसी वजह से मिसबाह को बाद में बनाना पड़ा इनको, वरना डिजर्विंग जो उस वक्त कैप्टन था वो यूनुस खान था। और जहाँ तक आपने बात की कि अभी अगर यूनुस खान का रोल भी था, मेरे ख्याल से यूनुस खान जो है ना उसको क्रिकेटिंग की जो सेंस है उसके उसको मद्देनजर रखते हुए यूनुस खान अपोलोजाइज कर लेता कि मुझे एक ही रोल दे दें और वही मेरे लिए काफ़ी होगा, जो कि इन्होंने यूनुस खान बाय द वे इन्होंने अंडर 19 की जो बैटिंग कोच का रोल मांगा था उस वक्त यूनुस खान जो है थोड़े से 3-4 लाख इनका कोई मसला हो रहा था ज़्यादा मांग रहा था, इन्होंने उसको नहीं दिए, जो कि ड्रेविड को जो वो 40 लाख कोई ड्रेविड राहुल ड्रेविड लेता है इंडिया में, तो यूनुस खान ने शायद 9 लाख दे रहे थे, यूनुस खान ने डिमांड की
उस की
नए इन्होंने 10,000 रन क्रॉस किए थे, यूनुस खान की रेपुटेशन भी अच्छी थी, और जाहिर सी बात है यार अपने प्लेयर को आप दे दो, अगर आपको आप शो कर रहे हो अपने फाइनेंशियल में कि हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, वो बंदा अगर वो सुना है उसकी जो टेस्ट मैच की प्रिपरेशन होती थी वो इतनी एक्यूरेट परफेक्ट होती थी, वो रात को 9-10 बजे तक ना अपना किट सफाई सुथराई करके रख के जो है ना ऑर्गेनाइज करके सो जाता था, तो अगर वही चीज़ वो एक यंग एज में अंडर 19 लोगों को ट्रांसफर करता तो वो इतना फ़ायदेमंद होता,
डिसिप्लिन,
तो डिसिप्लिन, तो उस वक्त में कुछ क्लैश हो गया, यूनुस खान भी उन्होंने फिर एक मुआहदा नहीं हुआ अभी, शुक्र है एक पॉजिटिव चीज़ जो PCB ने की है अभी कि जो इनका जो NCA थी वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी थे उसको अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर नाम दे दिया है लाहौर का, उसमें डोमेस्टिक कोचिंग के लिए और जो वहाँ पे जो कोच स्पेसिफिक रखते हैं उनके लिए रिसेंटली जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं उनको लेके आए ये लोग, ये बहुत अच्छा एक चीज़ की है। सक्तान मुश्ताक है वहाँ पे जो कि लेजेंड है, फिर
सक्तान
मुश्ताक वहाँ पे स्पिन कोच हैं,
अच्छा,
और मोहम्मद यूसुफ है वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं,
तो यूके चला गया था ना,
एग्जैक्टली वो बस उनका फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ भी कोचिंग रोल था, फिर इंग्लैंड के साथ भी था, तो वो है वहाँ पे, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने की है, आप देखें नया सेटअप है,
भाई यूनुस खान को भी कहते हैं इमरान खान की सिफारिश पे आए थे वो, चलो
चले देखते हैं
ये तो जितनी माशाल्लाह डिटेल में बात करते हैं क्रिकेट पे तो आई थिंक काफी और एपिसोड
मेरे ख्याल में क्रिकेट पॉडकास्ट होनी चाहिए थी ये वाली एपिसोड।
मोहसिन भाई, मोहसिन भाई को बहुत जबरदस्त नॉलेज है, हिस्ट्री भी जानते हैं,
टेक्निकल
टेक्निकल चीजें भी जानते हैं।
सुफियान आएगा ना, तो
सुफियान आएगा।
एक इंटरेस्टिंग चीज, मुझे ना बचपन से ही बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का, और जो है ना मैं बड़ी ख्वाहिश थी कि यार जब मैं कभी भी जाऊँगा ना पाकिस्तान तो मैं ट्रायल्स दूंगा और इस तरह के ना ज्वाइन करूंगा क्रिकेट एकेडमी वगैरह।
नहीं अब पॉडकास्ट क्या करेंगे
कि हाँ, नहीं ठीक है, तो खैर टाइम नहीं है इतना। और मुझे याद है जब वो एक कहते हैं ना जब आपको कोई तकलीफ हो तो आप दुआ करें ना तो वो दुआ कबूल होती है, तो मैं लिटरली बात बता रहा हूँ, जब मुझे कोई चोट लगती थी ना कोई, फॉर एग्जाम्पल जाते जाते कहीं पैर साइड पे लग गया या कोई चीज़ ऐसी लग गई, मैं दुआ मांगता था कि पाकिस्तान जीत जाए, जब पाकिस्तान ही मैच चल रहा है पाकिस्तान जीत जाए, मतलब मुझे और कोई दिमाग में चीज़ नहीं आती थी।
ये
आपको पता है क्या होना चाहिए, आपको आपको आईएसआई का चीफ होना चाहिए।
चलिए आप अपनी शीशे वाली कहानी,
आपकी हुब्बुल वतनी इतनी है कि आपका आप जब रिटायर होंगे तो आप तब भी
कोई खेलकर इनकी शीशे वाली कहानी
को सुनें। और हमारे घर में ना जो बाहर निकलते वक्त पैसेज में ना बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, तो मैं क्रिकेट बैट पकड़ के उसके सामने, वैसे ही
क्रिकेट बैट भी नहीं है,
कुछ भी बैट भी नहीं होता,
वो भी कंघा पकड़ के
वो बैटिंग की जरा वो ना प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे याद है मैं इतना उसमें नहीं, मगर मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता था, इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि कभी कभार मुझे पता नहीं लगता था कोई अम्मी अबू खड़े हुए देख रहे हैं मुझे हम लोग क्या कर रहा है। और मुझे याद है
बेटे का कुछ जो है ना वो आ गया है, कोई फ्यूज उड़ गया है।
और मुझे याद है मेरी अम्मी ने एक दफा कमेंट मारा कि सेंचुरी हो गई, मैंने कहा नहीं अभी 6 रन रह गए अभी।
इसको क्रिकेट पे भेजना चाहिए था
यार, अबू ने खुद इतनी ज्यादा खेली लेकिन।
याद है स्कूल में ना जब मैं कॉलेज में था तो वो ट्रायल्स, हालांकि मैं उस वक्त मेरे ख्याल से 14-15 साल का था, और उस वक्त अंडर 19 टीम की जो स्कूल की थी वो ट्रायल ले रहे थे, मैंने एक दफा बॉलिंग करवाई, तो मैं बस फास्ट बॉलर, मुझे बॉलिंग ही पसंद थी, फास्ट बॉलिंग ही पसंद थी मुझे, और वो बड़ा मजा आता था जब वो अपने एज ग्रुप के लड़के कहते ना यार स्लो बॉलिंग करवाया करो, तो और भी मजा आता था यार,
मुझे डरते हैं ये।
तो अब मैं जब ट्रायल से ना जा रहा था, वो ना हमारे मैचेस थे तो उन्होंने कहा यार परमिशन ले लो पहले घर से, हार्ड बॉल से खेलना है तो वो चोट बोट भी लग सकती है और आपको जाना होगा वीकेंड्स पे कॉलेज में, जाहिर सी बात है परमिशन नहीं होती थी। तो मैंने अबू कॉल की तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है भाई जाने की, आराम से ना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैंने कहा यार चलो फिर मैंने जाके जो है ना फिर
सीरीज आई थिंक 3 मैचों की सीरीज है,
ये दो मैचों की सीरीज है, 3 T20 है, तो अभी अल्लाह करे नेक्स्ट वाले जीत जाए, रावलपिंडी में मैच है
इंशाल्लाह। हम कहते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने में मिले, या जीते या हारे हम तुम्हारे साथ हैं।
हमें तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है।
देखो अगर मैं अभी बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान हार रहा हो खुदा ना खास्ता तो मोहसिन भाई को कोई कोई कुछ करे ताकि फौरन दुआ करें,
कॉल कर लीजिएगा मुझे पूछने के लिए।
कर लो,
तबीयत सही है। हाँ सही है, आई थिंक कोई भी दिन नहीं गुजरता शायद ये क्रिकेट से रिलेटेड कोई इन्होंने काम ना किया हो, शायद क्रिकेट के बारे में पढ़ते हैं
या क्रिकेट देखता हूं, टेस्ट मैच भी है, कोशिश करता हूं कि फॉलो करते रहूं जो भी है। एक दफ़ा और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, लास्ट स्टोरी, ये असली स्टोरी है और मेरे साथ ये हुआ है। हमारे एक मुझे याद है कॉलेज में क्लास चल रही थी और उन दोनों ना मैच चल रहा था पाकिस्तान का, उन दोनों तो नेट था नहीं, मैं ना नेट पे फॉलो कर सकता हूँ मैच क्या चल रहा है, मुझे बड़ी वो हो रही थी यार स्कोर हो क्या रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, और मैंने ना यकीन करें, और क्लास में हमारे जो टीचर थे ना मुझे याद है शायद केमिस्ट्री की क्लास थी, वो उनसे बेचारे से ना क्लास कंट्रोल नहीं रही, सारे शोर मचा रहे हैं, मैंने इसका फ़ायदा उठाया, मैं लिटरली डेस्क के नीचे गया, मैंने घर कॉल मिलाई, मैंने अम्मी कॉल, मैंने कहा अम्मी ये बताएं ये स्कोर क्या हो रहा है अभी, तो अम्मी ने कहा तुम कहाँ हो, मतलब मैंने कहा मैं क्लास में हूँ, कह रही क्लास में तो टीचर किधर है, तुम कहाँ से मुझे कॉल कर रहे हो, क्लास में बैठे हुए नीचे, मैंने कहा मैं डेस्क के नीचे अभी घुसा हूँ, मुझे इतनी स्कोर बताएं क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे स्कोर बताया टी वी खोल के, अरे इसको, मैं कहा ठीक है चले ठीक है, पता लग गया स्कोर।
सही 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 होगा, तो यहाँ पर हम अपनी एपिसोड करते हैं ख़त्म। तो आप हमें सुने, हम YouTube पे भी हैं, Apple Podcast पे भी हैं,
SoundCloud पे भी हैं,
Reddit
पे हैं, Twitter पे हैं,
Google Podcast,
और जो भी
वेबसाइट है हमारी पॉडकास्ट,
हाँ हमारी वेबसाइट है पॉडकास्ट की, कोई भी सजेशन हो दें, हम बड़ी सीरियस लेते हैं, कोई भी कमेंट होता है हम उसको पढ़ते हैं, सीरियस लेते हैं, इवन हम आंसर भी करते हैं उसका भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा फिर मुलाकात होगी, रब रखा फलाम चौक।